परमेश्वर जो महान और सामर्थी परमेश्वर है, जिसने अपने आत्मा की सामर्थ्य से सारी चीजों को बनाया है और उसी ने यीशु मसीह को भेजा जो इसका इकलौता पुत्र है, जो स्वेच्छा से हमारे पापों के लिए घात हुआ, एक धार्मिक जन हम अधार्मिक लोगों के लिए मरा, ताकि हमें फिर से परमेश्वर के साथ उसकी अद्भुत सहभागिता में मिला सके जो आज हमें मिली हुई है। जैसा कि आशीषित वचन हमें सिखाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से हम उसकी सहभागिता में थे, जब भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। हम कैसे कह सकते हैं कि यह वह समय नहीं था जब वो मेमना ज़िबह किया गया था, जब परमेश्वर ने अपने महान विचारों में हमें यीशु के द्वारा उद्धार पाकर जय जयकार करते और आनंदित होते देखा था। और आज रात हमने उस महान दिव्य महिमा का जरा सा अंश पाया है जो उसकी दूसरी आमद पर हमारे ऊपर प्रकट करी जाएगी। तब सारे रोग और दुख दूर हो जाएंगे, तब हमें उसी की तरह की महिमा में देह मिलेगी और हम उसे वैसा ही देख पाएंगे जैसा वो है। अब हम अपने झुर्रीदार हाथों और सफेद होते बालों को देखते हैं, झुकते कानों को देखते हैं। हमें मालूम है कि हम नाशमान हैं और उसी मिट्टी की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी तरफ हमारे सिर इस समय झुके हैं और जिसमें से हम आए हैं। मगर प्रभु परमेश्वर, हमें विश्वास है कि आप ही परमेश्वर हैं और आपने एक वायदा किया है कि अंत समय में वह हमें फिर से जी उठा लेगा, और हम इसका विश्वास करते हैं। निष्ठापूर्वक विश्वास सहित आज रात हम तेरी उपस्थिति में खड़े हैं और साहस के साथ याओ के संग आए हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए यीशु ने हमसे कहा है। ये सब हमारे किसी अच्छे काम के कारण नहीं है जो हमने किया है, क्योंकि हमने तो कुछ भी ठीक नहीं किया, मगर हम नम्रतापूर्वक आए हैं। वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये खजाना हमें उसके उस अनुग्रह के द्वारा मिला है जो हमें दिया गया है। इसलिए हम आज रात ये विनती करने आए हैं कि आप हमें वचन देकर आशीष देंगे, क्योंकि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, वरन प्रत्येक उस वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुँह से निकलता है। और होने दे के परमेश्वर के मुँह ही से आज रात वचन निकले। होने दे कि वचन हमें मिले और गहराई के साथ हमारे हृदयों में बैठ जाए और सभी सुनने वाले तेरे आत्मा व तेरी उपस्थिति से भर जाएं। क्योंकि ये प्रार्थना हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज और कल की रात हम इस विषय पर बोल रहे थे और विचार कर रहे थे कि हम एक नामधारी संस्था या गिरजा क्यों नहीं है, वाई वी आर नॉट ए डिनोमिनेशन। और हमने बड़े जोरदार शब्दों में इस बात को कहा कि हम क्यों एक नामधारी गिरजे में नहीं ढले हैं और क्यों हम नामधारी गिरजे में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं कि नामधारी संस्थागत गिरजे कभी भी परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त या मखसूस नहीं किए गए, वे शैतान के द्वारा अभिषिक्त किए गए। और पवित्र शास्त्र इस बात को साबित करता है, वो बताता है कि किस प्रकार से नामधारी गिरजे त्रुटियों के आने का कारण बने। अब हम ये बात सुधार के लिए कह रहे हैं, ताकि ये आराधनालय परमेश्वर के आशीषित वचन के चहुओर बैठकर उसके संग सहभागिता कर सके। हमारी आशाएं इस पर आधारित नहीं है कि कोई नामधारी गिरजा क्या कहता है, कोई मनुष्य क्या कहता है, वरन इस पर टिकी है कि परमेश्वर प्रभु क्या कहता है, और यही एकमात्र तरीका है जो हमें सही और ठीक कर सकता है। आज प्रात मैं सोचता हूँ, मैंने 5 विभिन्न लेख देखे जो नामधारी गिरजे ने जारी किए हैं। जो कुछ उनमें लिखा है पवित्र शास्त्र वैसा जरा भी नहीं कहता जिसके पीछे ये प्रोटेस्टेंट गिरजे झुक रहे हैं। पुरानी माता वैश्या कैथोलिक चर्च जो कुछ सिद्धांत बनाकर सिखाता था, वही सब कुछ प्रोटेस्टेंट गिरजे में आ गया है, और हम उसी चीज को ग्रहण और स्वीकार कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। प्रथम नामधारी गिरजे के बारे में आज दोपहर बाद हमने नाइसिन गिरजे के नाइसिन फादर्स के इतिहास में देखा था। प्रेरितों की मृत्यु के बाद नाइसिन फादर्स नियुक्त किए गए थे जो बहुत सालों तक चलते रहे। उन लोगों ने 325 वर्षों के बाद अंत में फ्रांस में विशाल नीसिया सभा आयोजित करी। वहीं पर ये मत और सिद्धांत रचे गए जो आज कैथोलिक गिरजे के पास हैं और वही प्रोटेस्टेंट गिरजों के हाथों में सौंपे गए हैं। और जैसा कि इस सुबह वचन सिखाते हुए मैंने कहा था कि उन प्रत्येक कलीसियाई कालों में थिस्सलुनीकियों कलीसियाई काल तक 1500 वर्षों के अंधेरे काल में परमेश्वर ने और कहीं नहीं वरन वहीं ये कहा है कि तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। और दूसरी ओर वे लोग अब मसीह में कायम नहीं रहे और वे नामधारी गिरजों के नाम में ढल गए थे, जैसे कि कैथोलिक, लूथर, वेस्ली, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंतेकोस्तल और नीचे तक नामों वाले गिरजों में वे ढलते चले गए। लेकिन काल की ठीक समाप्ति से पहले उसने कहा, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल दिया है। देखा आपने, और हमारा विश्वास है कि हम उसी खुले द्वार वाले काल में हैं, जो अंतिम कलीसियाई यानी लौदीकियाई काल के बीच में खुला हुआ है। ठीक 325 वर्षों के बाद वह नाइजीन सभा हुई और उसमें उन्होंने इन सारी बातों को स्थापित किया, जैसे कि छींटे देकर, पानी उडेलकर, झूठे बपतिस्मे, झूठी पवित्र आत्मा और दूसरी सभी बातें उन लोगों ने अपना ली। और लूथर जो कि पादरी था, जब कैथोलिक गिरजे को छोड़कर बाहर आया तो अपने साथ इन चीजों को भी ले आया और उसमें से ज्विंगली आया, ज्विंगली में से कैल्विन, कैल्विन में से वेस्ली और नीचे तक इसी तरह से आते गए और वे बस उन्हीं मतों और सिद्धांतों को नीचे तक लेकर आए। किस प्रकार से परमेश्वर अपनी कलीसिया को निर्देशित करता जबकि वे उन मार्गों पर चल रहे थे जिन्हें परमेश्वर ने कभी भी उनके लिए नहीं बनाया था कि वे उन पर चलें। और याद कीजिए कि प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में हम एक औरत को पाते हैं। अब देखिए कि ये शब्द एकदम स्पष्ट है और पवित्र शास्त्र में लिखे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मैं उन्हें कह सकता हूँ। वहाँ कहा गया है कि ये औरत वैश्या है, जिसका मतलब हुआ कि वह एक बदनाम स्त्री है। ऐसा सोचा जा सकता है कि उसने एक मनुष्य से विवाह करने के बाद दुनिया से व्यभिचार किया और वो वैश्याओं की माता है, अतः उसकी बेटियाँ थीं। और हमने भौगोलिक रीति से भी इसका नक्शा खींचा था क्योंकि मैंने स्वयं वहाँ जाकर ये सब देखा है। पवित्र शास्त्र में देखकर, सारे सिद्धांत और उसकी सारी बातें देखकर मेरा विश्वास है कि प्रभु ने पंक्ति दर पंक्ति ठीक ठीक बिठाकर दिखाई और यह वैश्या कैथोलिक गिरजे के अलावा और कोई नहीं है और वही ऐसा हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। और उसने किसको जन्म दिया? उसने प्रोटेस्टेंट गिरजों को जन्म दिया, निश्चित रूप से जन्म दिया। और उसके हाथों में उसके व्यभिचार से भरी मदिरा का प्याला था जिसे उसने दुनिया के राजाओं को दिया। आत्मिक रीति से कह रहा हूँ कि वह सारी धरती पर शासन कर रही थी। ये बात एकदम ठीक है, यहाँ कोई अन्य नहीं है। देखें, आइए हम दानियल की पुस्तक में से उस मूर्ति को देखें। मूर्त को देखें, सोने का सिर था यानी बाबुली राज्य, चांदी यानी मादा फारसी राज्य, पीतल यानी सिकंदर महान व अन्य ग्रीक राज्य। तब आता है रोमन साम्राज्य, पूर्वी व पश्चिमी रोम, मूरत के दो पांव। और ध्यान दें कि ये 10 राज्य जो 10 सींग के प्रतीक हैं, जिसके बारे में हम आज प्रात सीख रहे हैं, उन प्रत्येक 10 राज्यों में जो आने वाले थे, लोहा और मिट्टी मिले हुए थे और वो लोहा टांगों से मिला था जो कि रोम का प्रतीक था। हर एक देश में जो इस आकाश के तले हैं, कैथोलिक गिरजे के माध्यम से रोमन वाद की धाराएं मिली हुई हैं। ये बात एकदम ठीक है और वे कभी कहीं भी आपस में मिल नहीं पाएंगे और वे आपस में विवाह कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र कहता है कि वे ऐसा ही करेंगे। आज आप उनको देखिए, आपका लड़का एक कैथोलिक लड़की के साथ विवाह करने जाता है, तब उसको वादा करना पड़ता है कि वे बच्चों को कैथोलिक पद्धति पर पालेगा। अगर लड़का कैथोलिक है तो लड़की को ऐसा वादा करना होता है। देखिए कि ये दूसरे पक्ष की शक्ति को तोड़ने के लिए किया जाता है, मगर ये है क्या? पवित्र शास्त्र दावा करता है कि सारा कुछ वैश्य है। अब आप क्या करेंगे? ये ठीक बात है। लोगों के पापों का क्या अंजाम होना था? हमने व्यवस्था विवरण की पुस्तक में देखा था कि एक नाजायज संतान प्रभु की सभा में 14 पीढ़ियों तक दाखिल भी नहीं हो सकता था। ये नियम व्यवस्था के अंदर था और मसीह व्यवस्था को बढ़ाकर दिखाने और उसे पूरा करने आया था। तो इस नियम का प्रभाव कितना अधिक हो जाता है। आज सड़कों पर फड़फड़ाते थिरकते इन छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या मामला है? ये सिगरेट पीती, छोटे वस्त्र पहने, बाल कटाए इत्यादि बुराई लिए इन थिरकती स्त्रियों को क्या हो गया है? इनके साथ ये क्यों है? क्योंकि इनकी मम्मी का व्यवहार भी ऐसा ही था। यह तो अधर्म है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवेश कर रहा है और ये सब इसलिए है। और इससे हमें क्या प्राप्त हुआ है? हम एक ऐसे स्थान पर आ पहुँचे हैं जहाँ किसी और चीज का जमघट नहीं, वरन अस्वास्थ्यकर पापों की भीड़ है। यही कारण है कि परमेश्वर ने रूस को एटम बमों की शक्ति सहित ऊपर उठाया ताकि सारे पाप को धरती पर से वैसे ही साफ कर दे जैसे जल पड़ले के समय हुआ था जब परमेश्वर ने बादलों को उठाकर स्थापित किया था। वास्तव में ऐसा ही है और पवित्र शास्त्र भी यही कहता है। रूस जो नास्तिक देश है पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में है और उसी की योजना पर चल रहा है।
ठीक वैसे ही जैसे नबूकदनज़र को इसराइल को नाश करना था क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के संग चलना छोड़ दिया था। रूस को इसीलिए खड़ा किया गया है कि वे कैथोलिक चर्च के संतों के लहू का पलटा ले। लहू उन्होंने बहाया है, पवित्र शास्त्र ऐसा ही कहता है। वो सारे मामले का हिसाब चुकाने जा रहा है। अतः यहाँ देखें कि अगर उनकी माँ गीत गाने वाली और दादी और परदादी थिरकती फिरने वाली थीं, तो वह आज क्या है? रॉक एंड रोल वाली नग्न लड़की। उसके बच्चे क्या बनने जा रहे हैं? और आप पूछेंगे, क्या परमेश्वर ऐसा करता है? हाँ श्रीमान, परमेश्वर संतानों में 14 पीढ़ियों तक अधर्म को पाता है। और अगर हम कहें कि मसीह इस नियम को और बड़ा और स्पष्ट बनाता है, तो कहना होगा कि अधर्म 100 या 500 पीढ़ियों तक बना रहता है। क्यों? यीशु ने कहा था कि पुराने समय के लोगों से कहा गया था कि तू खून ना करना। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो अपने भाई पर अकारण क्रोध करता है, वह उसका खून कर चुका। पुराने समय के लोगों से कहा गया था कि तुम व्यभिचार ना करना, मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री को बुरी नजर से देखे, वह उसके साथ व्यभिचार कर चुका। आवर्धन करना या बढ़ाना, मैग्निफाई करना, इसका अर्थ है उसे आकार में कई गुना बढ़ा देना। अगर व्यवस्था में वहाँ 14 पीढ़ियों की बात थी, तो आज उसी के लिए कितने अधिक समय की बात होगी। नवयुवकों, अधेड़ लोगों और विवाहित लोगों में विवाह संबंधी वादों के प्रति कुछ आदर सम्मान नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वे एक स्त्री को लेकर बस एक साधारण कुत्ते की तरह कहीं भी रहने लगते हैं। एक कुत्ते के पास कुछ लोगों से अधिक आदर और नैतिकता होती है। और मुझे मालूम है कि ये कथन भद्दा और कठोर है, मगर यह ठीक बात है। क्यों? गिरजे इन बातों के विरुद्ध कुछ नहीं कहते और इन्हें मान्यता देते हैं। क्यों? क्योंकि वे वैसा ही कर रहे हैं जैसा उनकी माँ करती थी। गिरजों ने विरासत में वही सब पाया है, क्योंकि गिरजे और ये प्रोटेस्टेंट चर्च कैथोलिक चर्च में से निकल कर आए हैं, और कैथोलिक चर्च के पाप प्रोटेस्टेंट गिरजों के यहाँ पधार चुके हैं। वास्तव में ऐसा ही है। इसलिए एक बर्तन केतली को गंदा कह ही नहीं सकता। यह एकदम सत्य है। और अब देखिए कि पवित्र शास्त्र में हम ये सब पाते हैं, और इसके खिलाफ मैंने कहा था कि कोई मुझे इसके खिलाफ वचन में से बताए, मगर आज रात मुझे मेज पर किसी का लिखा एक भी नोट नहीं मिला। मैंने कहा था कि मुझे किसी एक जगह पर दिखाइए कि कब परमेश्वर ने किसी नामधारी गिरजे को मखसूस किया। किसी एक जगह ही दिखाएं कि कब परमेश्वर ने किसी स्त्री प्रचारक को अभिषिक्त किया। किसी एक जगह दिखाएं जब परमेश्वर ने छींटे देने को मखसूस किया। मुझे किसी एक जगह दिखाएं कि कब परमेश्वर ने जल उंडेल कर बपतिस्मे को अभिषिक्त किया। मुझे किसी एक जगह दिखाएं कि परमेश्वर ने कहां किसी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया। इन चीजों को खोज कर देखिए। और इस पर भी हम लगातार वैसा ही कर रहे हैं। ये सब कुछ गिरजों में हो रहा है। भाई, हम बैप्टिस्ट नहीं बन सके। इसका कारण ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में दिए जाने वाले बपतिस्मे में विश्वास करते हैं। पवित्र शास्त्र में कभी भी कोई भी किसी को भी और प्रकार से बपतिस्मा नहीं दिया गया। आप किसी एक जगह मुझे ये दिखाएं कि जहां एक भी जन उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया गया हो, मैं अपने हाथ उठाकर कह दूंगा कि मैं झूठा नबी हूं। अगर पवित्र शास्त्र कहता है कि आपको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना अवश्य है, तो इसका अर्थ है कि आपको वैसा ही करना चाहिए। परमेश्वर ने उन जनों को फिर से बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी थी। इससे कुछ मतलब नहीं कि उन्होंने किस प्रकार का बपतिस्मा लिया था। उन्हें फिर से सही बपतिस्मा लेना था। उन्होंने उसी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया था जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया था। और उसने कहा था कि इससे अब काम नहीं चलेगा, तुम्हें अब फिर से सही बपतिस्मा लेना होगा। और इससे पहले कि वे पवित्र आत्मा पाते, उन्हें वैसा ही करना पड़ा था। यह परमेश्वर का कार्यक्रम था। आज रात मैं इस बारे में उससे भी थोड़ा और गहराई में जाना चाहता हूँ। क्यों नहीं, यीशु अपने वचन पर स्थिर रहता है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? आज सुबह आप सभी यहाँ थे, मगर मैं इस बारे में थोड़ा और कुछ कहना चाहता हूँ। जबकि उनका बपतिस्मा हो चुका था, तब पौलुस ने उन्हें फिर से बपतिस्मा लेने की आज्ञा क्यों दी? पौलुस ने कहा है कि स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी आकर अगर कुछ और सुसमाचार तुमको प्रचार करे, तो वह शापित हो। अब आप कहते हैं कि इस बारे में हमें नया प्रकाशन मिला है। नहीं, आपको कुछ नहीं मिला। ये वही बात है कि शैतान एक नए प्रकाशन को लेकर हव्वा के पास गया था। किसी नए प्रकाशन की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि आप उस प्रकाश में चलें जो परमेश्वर ने पहले ही दे दिया है। बस इतना ही है। अब ये देखिए कि कितना सरल है। जब वे उस पहाड़ से यीशु के रूपांतरण के बाद लौटे, तो यीशु ने चेलों से पूछा था कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। एक ने कहा, तू मूसा, एलिया या नबियों में से कोई एक नबी है। उसने पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने कहा, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने ये बात तुझ पर प्रकट नहीं करी है। देखा, ये प्रकाशन धार्मिक शिक्षण संस्थाओं या नामधारी गिरजों से नहीं मिला है। मांस और लहू ने ये बात तुझ पर जाहिर नहीं करी है। तूने ये बात किसी धर्मशास्त्र सिखाने वाले स्कूल से नहीं सीखी है, वरन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर जाहिर करी है। और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर कभी प्रबल ना होंगे। इस बात के आत्मिक प्रकाशन पर कि वह कौन है, ध्यान दे। और मैं कहता हूँ कि तू पतरस है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा। जो कुछ तू धरती पर बांधेगा उसे मैं स्वर्ग में बांधूंगा, जो कुछ तू धरती पर खोलेगा उसे मैं स्वर्ग में खोलूंगा। अब देखिए कि उसे अपने वचनों पर स्थिर रहना है, अन्यथा वह परमेश्वर नहीं गिना जाएगा। अब जब यीशु ने ये कहा था, उसके कुछ समय बाद उसे मारा गया, फिर जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया। और पिंतेकुस्त के दिन पतरस ने सुसमाचार को लोगों के लिए खोल दिया। क्या उसने ऐसा किया? निश्चित रूप से उसने ऐसा ही किया। अब देखिए कि जब ये हुआ तो लोग उन पर हंस रहे थे क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भरे थे। उन्हें गप्पी, होली रोलर्स या इसी तरह के नामों से पुकारा जा रहा था, यहाँ तक कि लोग उन पर हंस रहे थे और कह रहे थे कि ये नई मदिरा के नशे में डूबे हैं। और पतरस उनके बीच में उठ खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में उसने कहना शुरू किया, भाइयों मेरी बात सुनो, मेरी बात कान लगाकर सुनो। ये लोग मदिरा के नशे में नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो, अभी तो तीसरे पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल नबी ने कही थी, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा उंडे लूंगा, मैं अपने पुत्रों पुत्रियों दासों और दासियों पर भी अपना आत्मा उंडे लूंगा। जब उन्होंने ये सुना तो उनके हृदय छिद गए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे आदमी को बोलते सुना था जो कैखेग है नहीं जानता था, फिर भी यह जानकर कि उसके अंदर पवित्र आत्मा की ज्वाला भड़क रही थी, उन्हें उसकी बातों पर ध्यान देना पड़ा था। उसे रोक दो, क्यों मैं ऐसी कोशिश कर रहा है कि इस सूखे भवन पर तेज चलती हवाओं के मौसम में आग लगा दे? तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो पवित्र आत्मा से भरा था। और फिर उसने क्या किया? उन्होंने पूछा, हे भाइयों हम क्या करें कि उद्धार पाएं? अब ध्यान दें कि पतरस, तेरे पास स्वर्ग के राज्य की कुंजियां हैं, समझे आप? अब देखिए कि जब यीशु तीसरे दिन जी उठा था तो उसके पास स्वर्ग के राज्य की कुंजियां नहीं थी। क्या आप जानते हैं? उसने कहा था कि मेरे पास मृत्यु व अधोलोक की कुंजियां हैं, स्वर्ग के राज्य की नहीं, क्योंकि वह पतरस को दे दी गई थी। अब यीशु ने कहा था, पतरस जो कुछ तू धरती पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा, जो कुछ तू धरती पर बांधेगा वो मैं स्वर्ग में बांधूंगा। यहाँ पतरस खड़ा है और वो कुंजियां लिए है कि इस आशीषित सुसमाचार को दुनिया के लिए खोल दे। कुंजियां उसके हाथों में है और वे पूछ रहे हैं कि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। अब देखिए कि कोई मतलब नहीं कि प्रेरित लोगों से क्या करने को कहता है। परमेश्वर को उस बात को स्वर्ग में मान्यता देनी ही होगी अगर उसने यह अधिकार प्रेरित को दिया है। अब देखें कि पतरस ने कहा कि पश्चाताप करो और तुम में से प्रत्येक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्या ये ठीक है? यही कारण है कि और किसी भी नाम या किसी भी रीति के विरुद्ध चाबी स्वर्ग में घूम चुकी है। कुंजियां धरती पर और स्वर्ग दोनों जगह घूम गईं। अन्यथा यीशु ने पतरस को दिया अपना वचन पूरा नहीं किया। पवित्र शास्त्र में इसके बाद हर जगह लोगों को यीशु मसीह के नाम में ही बपतिस्मा दिया गया, और वे लोग जिन्होंने पहले बपतिस्मा ले लिया था उन्हें फिर से यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना पड़ा कि वे पवित्र आत्मा पाएं। ये ठीक बात है, आज भी ऐसा ही है। अतः अगर हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा सिखा रहे हैं तो वह झूठी भविष्यवाणी है। अब देखिए कि मैं आपको आघात नहीं पहुंचाना चाहता, मगर मैं इस पर जोर देना चाहता हूं ताकि यह कलीसिया इसे जान सके। हम कोई अनपढ़ लोगों का चटकता हुआ बर्तन नहीं है। हमें मालूम है कि हम परमेश्वर के वचन में कहां स्थिर हैं, समझे? हम जानते हैं। मैं चुनौती देता हूं कि कोई मुझे दिखाए कि किसी एक जगह पर भी कभी किसी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया गया है। अब आप सच्चाई को जानना चाहते हैं, मानना चाहते हैं या झूठी भविष्यवाणी को? पवित्र शास्त्र में खोज कर देखो, ये आप पर निर्भर है। मुझे दिखाइए कि पवित्र शास्त्र में किसी एक जगह पर भी किसी नामधारी गिरजे या उसके किसी जन को अभिषिक्त किया गया। मुझे पवित्र शास्त्र में दिखाएं कि कभी किसी महिला प्रचारक को मखसूस किया गया। मुझे पवित्र शास्त्र में दिखाएं कि ये सारी बातें जिन पर हम बातचीत कर रहे हैं कभी इन्हें अभिषिक्त किया गया। पवित्र शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे किसी एक जगह ये सब दिखाएं। आप अपने नामधारी गिरजे में जाएं। जब मेथोडिस्ट आए तो उन्होंने पवित्रीकरण सिखाया, ये अच्छी बात है, मगर जब उन्होंने ऐसा किया तो फिर नामधारी गिरजा बना लिया और बात खत्म हो गई। यही कारण है कि पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम्हारे पास एक नाम है। आप कहते हैं कि मैं एक मसीही हूँ, ठीक है, मगर आपका गिरजा कौन सा है? आप कहते हैं मेथोडिस्ट हूँ, क्यों? तब आप वैश्या हैं। मैं बैप्टिस्ट हूँ, वैश्या हैं। पेंटिकोस्टल, आप एक वैश्या हैं। आप उस नामधारी गिरजे के सदस्य हैं, आपको मसीह का होना चाहिए। ये कहने का कुछ अर्थ नहीं कि मेथोडिस्ट हूँ, बैप्टिस्ट हूँ। अगर आप मसीही हैं तो फिर आप दिल से मसीह हैं। ये हर एक नामधारी गिरजे परमेश्वर के योग्य संतान उत्पन्न कर सकते हैं, ये ठीक बात है। मगर जब आप ऐसा सोचते हैं कि आप स्वर्ग में इसलिए जाएंगे क्योंकि आप मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट हैं, तो आप गलती करते हैं। यही वजह है कि हम इन सब से बाहर चले आए हैं। बैप्टिस्ट इन बातों को क्यों नहीं देख सकते? मैंने एक मेथोडिस्ट आदमी से पूछा था जो कि बहुत पहले लिखे एक लेख पर शोध प्रबंध लिख रहा था। उसने कहा था, आपके खिलाफ हमें बस एक बात कहनी है कि आप पेंटिकोस्टल लोगों के आसपास रहते हैं। मैंने कहा, हम कौन? हम यानी मेथोडिस्ट। मैंने कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। आप मेथोडिस्ट मेरी सभाएं आयोजित करें, मैं आपके शहर में आऊँगा। उसने कहा, ओह, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा, मैंने ऐसा ही सोचा था। मैं पेंटिकोस्टल के साथ रहा क्योंकि उन्होंने इस बात का विश्वास किया। ये ठीक बात है, वे लोग इस वचन से आनंदित हुए। एक वही है जो इससे लाभ उठा रहे हैं। कितने लोगों ने लाइफ पत्रिका में पेंटिकोस्टल चर्च के बारे में अभी अभी प्रकाशित लेख पढ़ा है? यह इस काल की एक सबसे अलौकिक घटना है। एक साल में उन्होंने जितने लोगों को पेंटिकोस्टल बनाया, सारे गिरजे मिलकर भी उतने नहीं बना पाए। क्यों? गलती पर होते हुए भी परमेश्वर उनके बीच रहा, क्योंकि उन्होंने सत्य पर विश्वास किया और उसी पर चलते रहे। मगर अब हम क्या कर रहे हैं, समझे? यही कारण है कि हम नामधारी गिरजे में नहीं हैं, और यकीनन पेंटिकोस्टल लोगों ने स्वयं को नामधारी गिरजों में ढाल लिया है। 40 साल पहले जब पवित्र आत्मा पहली बार पेंटिकोस्टल चर्च पर उंडेला गया था, तो उन्होंने गैर भाषाएं बोली, जो कि बहुत से दानों में से एक दान था। यह सबसे छोटा दान है। संत पौलुस के अनुसार अन्य भाषा बोलना सबसे छोटा दान है। और ज्यों ही ये दान उंडेला गया, उन्होंने कहा, हमें पवित्र आत्मा मिल गया। उन्होंने नामधारी गिरजा जनरल काउंसिल बना ली, जो आज असेंबली ऑफ गॉड है। उनका कहना था कि जब तक अन्य भाषा न बोली जाए, पवित्र आत्मा नहीं मिलता, और परमेश्वर उनके मध्य से चला गया और उन्हें वहीं बैठा छोड़ गया। निश्चित रूप से, जी हाँ श्रीमान। साथ ही वननेस वाले आए और उन्होंने यीशु के नाम में बपतिस्मा ढूंढ लिया। उन्होंने कहा कि हमने पा लिया है, और वे भी संस्थागत बन गए। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर बस उनके बीच से बाहर चला गया और वे बैठे रह गए। है तो ऐसा कि जो चाहे वह आए। आप देखें कि वननेस वाले असेंबलीज में नहीं जा सकते और असेंबली वाले वननेस में नहीं आ सकते। मैंने उनके कई बढ़िया से बढ़िया लोगों से बात करी है, डॉक्टर पोप व श्री गॉस व अन्य से पूछा है, वे लोग जो उनके बड़े लोग हैं। मैं उनके संग बैठा और पूछा, एक धर्मशास्त्र का अध्ययन करने वाला होने के नाते पवित्र आत्मा पाने का आधारभूत प्रमाण क्या है? उनमें से दो या तीन जन वास्तव में ईमानदार थे। उन्होंने कहा, भाई ब्रणम, हम जानते हैं कि यह गलत है, मगर हम क्या कर सकते हैं? यदि अब हम इस बारे में कुछ भी कहते हैं तो इससे सारा कार्यक्रम गड़बड़ा जाएगा। वास्तव में ऐसा ही है, तब आप बिशप या जनरल ओवरसियर नहीं बन सकेंगे। यही खास बात भाई, मैं तो चाहूंगा कि किसी कोने या किसी देवदार के पेड़ के तले एक छोटी सी सेवकाई करूं और सत्य का वचन प्रचारूं और सुनिश्चित हो जाऊं कि सत्य वचन कह रहा हूं। लोग सच्चाई चाहते हैं, और एक मसीही होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप सत्य की गवाही दें। परमेश्वर आपको इसके लिए उत्तरदायी ठहराएगा। तब इस बारे में यह है कि अगर आपका बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में नहीं हुआ है और आपने यह सब कुछ नहीं किया है और आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है, मगर आप कहते हैं, ओह, मैंने अन्य भाषा बोली है, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है। मैंने जादूगरों को, शैतानों को, तंत्र मंत्र करने वालों को और भक्तों को अन्य भाषाएं बोलते हुए देखा है। वास्तव में आपको मालूम है कि उनके पास कोई पवित्र आत्मा नहीं होता। मानव खोपड़ी में वे लहू पीते हैं, नृत्य करते हैं, शैतान को बुलाते हैं और अन्य भाषा बोलते हैं। निश्चित तौर पर ऐसा ही है, उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला होता है। इसलिए, केवल इसलिए कि आपने अन्य भाषा बोली है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है। केवल यही एकमात्र तरीका है जिससे आप जाने कि वह आपको मिल चुका है, और वो ये है कि जब आपकी आत्मा उसके आत्मा के संग गवाही दे और आत्मा के फल आप में प्रकट हों। आत्मा के फल हैं प्रेम, विश्वास, आनंद, शांति, दुख उठाना, भलाई, नम्रता और दयालुता। इसी से आप जान सकते हैं कि आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है। इसका प्रमाण स्वयं अंकित होता है। अब जबकि आप असेंबलीज, बैप्टिस्ट या प्रेसबिटेरियन होने के नाते आश्वस्त होकर बैठ जाते हैं, तो जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। आप एक वैश्या का नाम ग्रहण कर रहे हैं। यह एकदम ठीक बात है। उसमें से बाहर आओ, उसे छोड़कर उसमें से निकलो। मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके गिरजे से आप बाहर आए। इस बारे में आप जैसा चाहें वैसा करें, मगर इस धारणा से अलग हो जाइए कि ओह मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ, हम अद्भुत आश्चर्यक्रम वाले दिनों के आने पर विश्वास नहीं करते। क्यों विश्वास नहीं करते जब पवित्र शास्त्र ऐसा सिखाता है? आप कहते हैं कि ओह मैं तो चर्च ऑफ क्राइस्ट का हूँ, वे कहते हैं कि आश्चर्यक्रम करने के दिन तो बीत गए। वे लोग झूठे नबी हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ यीशु मसीह ने कलीसिया को सामर्थ दी कि वो है बीमारों को चंगा करे, मुर्दों को जिलाए, दुष्टात्माओं को निकाले। मैं चुनौती देता हूँ कि कोई भी मनुष्य मुझे पवित्र शास्त्र में से दिखाए कि कब उसने कलीसिया से यह सामर्थ वापस ली। इसे किसने वापस छीना? आपके मतों और सिद्धांतों ने, ठीक? परमेश्वर के वचन ने नहीं छीना। पवित्र आत्मा आज भी अपना काम कर रहा है, ठीक पहले की तरह सब कुछ कर रहा है और सर्वदा वह करता रहेगा। यही कारण है कि हमारा नामधारी गिरजा नहीं है। लिखा है जो भक्ति का वेश तो भरते हैं पर उसकी शक्ति को नहीं मानते, ऐसों से दूर रहो। हम ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करते। ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? हमें शीघ्रता से जितनी जल्दी संभव हो ये देखना है कि ये सब शुरू किस प्रकार से हुआ। अब देखिए कि पवित्र आत्मा के बारे में मेरे पास यहाँ बहुत से हवाले लिखे रखे हैं। एक और बात है कि विगत रात हमने संतों के अधिव्यवसायी होने या परसीवरेंस या निरंतर प्रयत्न करने के सिद्धांत को ललकारा था। उस तरह से नहीं जिस तरह बैप्टिस्ट मानते हैं, नहीं श्रीमान। कैल्विनिज्म के उनके सिद्धांत से मैं यकीनन बैप्टिस्ट से मतभेद रखता हूँ। वास्तव में मैं प्रेस्बिटेरियन से सहमत नहीं हूँ। आर्मेनियन सिद्धांत के उनके तरीके से मैं मेथोडिस्ट वालों से असहमत हूँ। हाँ श्रीमान, दोनों के पास कुछ सच्चाई है, मगर आपको पीछे जाकर वहाँ पहुँचना होगा जहाँ सच्चाई है। जब आप उससे बाहर चले जाते हैं तो फिर दूर तक भटक जाते हैं। वास्तव में यकीनन बैप्टिस्ट आते हैं, उनका प्रचारक कुछ लोगों को डुबकी का बपतिस्मा देता है और 10 में से 9 सिगरेट पीने वाले होते हैं। वे बाहर जाकर ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, नाचते और सभी तरह के बुरे काम करते हैं, और स्त्रियां छोटे वस्त्र पहनती सड़कों पर घूमती और पुरुषों की तरह से बाल कटाती हैं। वे धूम्रपान करती हैं, गंदी पार्टियों में जाती और अश्लील मजाक करती हैं। आप इसे मसीहत कहते हैं और आप सोचते हैं कि आपको अनंत सुरक्षा मिल चुकी है। इस तरह से तो आप नरक में जा रहे हैं। आपको इस तरह से स्वर्ग में जरा भी आनंद नहीं आएगा, निश्चित रूप से नहीं। ये अनंत सुरक्षा नहीं है। मगर जब मनुष्य पवित्र आत्मा से नया जन्म प्राप्त करता है, और आप पेंतेकोस्त लोगों, आप जो भवन में उछलते कूदते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पवित्र आत्मा मिल गया है। आप इस विचार को कभी अपने दिमाग में न आने दें। नहीं श्रीमान, वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका अपना स्वयं का जीवन इस बात की गवाही देता है कि आप परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं चल रहे हैं। ये ठीक बात है, आप ठीक नहीं कह रहे। यह अनंत सुरक्षा नहीं है, अभी तक नहीं। मगर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या कोई अनंत सुरक्षा होती है? पवित्र शास्त्र ऐसा ही कहता है। पवित्र शास्त्र कहता है कि हमारे नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में तब से लिखे गए हैं जब दुनिया शुरू भी नहीं हुई थी। जैसा मैंने आज रात कहा था, मैं फिर से कहता हूँ, उस मनुष्य ने जिसने ये गीत लिखा कि आज रात महिमा में नया नाम लिखा गया और वह मेरा नाम था, उसके विचार ठीक हैं, मगर पवित्र शास्त्र के अनुसार वह गलत कह रहा है। आपका नाम उस रात नहीं लिखा गया जिस रात आप बचाए गए। आपका नाम पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रकाशित वाक्य 13 और 17 आदि के अनुसार तब लिखा गया था जब दुनिया का आरंभ भी नहीं हुआ था, और यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से पहले घात किया गया था। परमेश्वर जो अनंत है किस प्रकार से ऐसा कर सकता है? किस प्रकार से एक अनंत परमेश्वर जो आदि से अंत तक सब कुछ पहले से जानता है, वह पाप को धरती पर आने की आज्ञा किस प्रकार से दे सकता है अगर उसके पीछे कोई कारण ना हो? जो कुछ हमने कहा बस जरा उसकी पुष्टि करने के लिए कहता हूँ। सबसे पहले कौन था, उद्धारकर्ता या पापी? उद्धारकर्ता यकीनन। कौन अधिक सामर्थी है, उद्धारकर्ता या पापी? अगर एक उद्धारकर्ता पापों को छुड़ा ले जाता है तब वह अधिक सामर्थी हुआ। भाई पहली बात तो ये उठती है कि उसने पाप क्यों होने दिया, ताकि वह ये दिखा सके कि वह उद्धारकर्ता है। चंगा करने वाले या बीमारी में से कौन अधिक शक्तिशाली है? चंगा करने वाला। तब उसने बीमारी को क्यों आने दिया? ये दिखाने के लिए कि चंगाई देने वाला वो है। मैं अब ठीक इस समय धार्मिक भाव विभोर हो उठा हूँ। हाँ श्रीमान, ये उसके गुण हैं। यही कारण है कि वो कष्ट आने देता है। यही कारण है कि वो दुख को आने देता है कि वह दिखा सके कि वह आनंद है। वास्तव में ऐसा ही है। यही कारण है कि हमारे पास रात है ताकि साबित हो सके कि दिन भी है। यही कारण है कि हमारे पास स्वभाव है कि दिखा सके कि शांति भी है। वास्तव में ये सब विरोधाभास हैं। परमेश्वर कितना अद्भुत है। अब देखें कि ये सब कैसे शुरू हुआ। हम सीधे विषय पर आएंगे, जितनी शीघ्रता से देख सकें इन बातों को देखेंगे। मैं पूरी रात आपको यहाँ नहीं बिठाऊंगा।
अब देखें कि हर एक चीज का शुरू होना जरूरी है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप इस बात को गृह बांध सकते हैं, इस बात को आप मामूली तौर पर मत लीजिए, मगर इसको सुनिए। अगर आप एक अनंत सृष्टि या रचना है तो ना तो आपका शुरू है और ना ही अंत, क्योंकि अनंत या इटर्नल शब्द जिस शब्द का अनुवाद है उसका अर्थ है जिसका ना आदि है ना अंत। क्या आप इसे याद रखेंगे? मैंने आज सुबह बताया था कि जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौट रहा था तो उसे मेलकिसेदेक मार्ग में मिला था। इब्रानियों 7 अध्याय में पवित्र शास्त्र बताता है कि लेवी ने मेलकिसेदेक को दशमांश दिया जबकि वह उस समय अपने पिता इब्राहिम की देह में था। इब्राहिम से इजहाक, इजहाक से याकूब और याकूब से लेवी उत्पन्न हुआ, यानी पिता, दादा और परदादा। और जब लेवी अपने परदादा की देह में था तो पवित्र शास्त्र उसको ये लाभ दे रहा है कि उसने मेलकिसेदेक को दशमांश दिया। अनंतता के बारे में बातें, ओह, वहाँ यूँ नहीं कहा गया है कि उसने प्रतीकात्मक रीति पर ऐसा किया, वरन पवित्र शास्त्र कहता है कि उसने दशमांश दिया। आमीन। अब यदि हम सही वंश व बीज हैं, तो जब पौलुस सुसमाचार प्रचार कर रहा था तो मैं व आप वहाँ थे। थोड़ी सी देर में हम इसे देखेंगे, गहराई से इसे सुनेंगे। ध्यान दें कि पवित्र शास्त्र हमारे लिए क्या दावा कर रहा है। पीछे, बहुत पहले से, पीछे से, जरा सोचिए। लेवी, उसका पिता याकूब, उसका पिता इजहाक, फिर इजहाक का पिता इब्राहिम, यानी लेवी का परदादा था इब्राहिम। जब लेवी अपने परदादा की देह में था तो उसने मेलकिसेदेक को दशमांश दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अय्यूब 27 और 38 में यह किन के बारे में लिखा है कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। परमेश्वर के वो पुत्र कौन से थे जो जय जयकार करके आनंदित हो रहे थे? यीशु ने कहा था, मैंने तुम्हारे संग जगत की उत्पत्ति से पहले से आनंद किया। हम समय में बंधी रचनाएं नहीं हैं, हम अनंतता की रचनाएं या सृष्टि हैं। जब तक मेरा पिता ही उसे अपने पास खींच ना ले, कोई मेरे पास नहीं आ सकता, और जो कुछ मेरे पास आता है मैं उसे अनंत जीवन दूंगा और अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। उन्हें कोई मेरे पिता के हाथों से छीन न लेगा जिसने उन्हें मुझे दिया है। अब आपको नुकसान किस तरह होगा? देखिए कि आप भयभीत हैं, डर गए हैं, आप इधर उधर दौड़ते हैं, और यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि अभी आप कहीं भी नहीं हैं। ये ठीक बात है। परमेश्वर अगर अनंत न हो तो वह आपको किस प्रकार से बचा सकता है? इस कलीसिया में कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अनंत है? हाथ उठाइए। आप जानते हैं कि इन्फिनिट अनंत शब्द का क्या अर्थ है? ये एकदम सिद्ध होता है। आप इस शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते। क्या कभी आपने अपने कैमरे को इन्फिनिट यानी अनंतता पर फोकस किया है? क्यों? उसके बाद क्या? बस ठीक है, उसके बाद और फोकस करने का कोई तरीका ही बाकी नहीं रह जाता। ठीक ऐसा ही परमेश्वर है, वह अनंत है, और अगर वो अनंत है तो एक भी मक्खी, मूंगरा, कीड़ा, जू या पतंगा यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। पृथ्वी पर कभी कभी भी जो रहा हो या आने वाला हो, इसके बारे में परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले से ना जानता रहा हो, ऐसा कोई नहीं हो सकता। अनंतता की कुछ धारणाएं हैं। तब एक अनंत परमेश्वर जो आपको आज बचाता है, वह जानता भी होगा कि वह अगले सप्ताह या अगले माह या अगले वर्ष आपको खो देगा। तब तो उसका उद्देश्य असफल हो जाएगा। वह आपको खोने नहीं देगा। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, वरन वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। वह और कुछ कर ही नहीं सकता। आप आगे से कुछ और गलत करेंगे ही नहीं। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता। वो पाप कैसे कर सकता है जबकि उसके लिए पाप बलि उपलब्ध है? जब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ तो बीमार कैसे हो सकता हूँ? मैं जबकि देख सकता हूँ तो अंधा कैसे हो सकता हूँ? ओह, मैं एक ही समय में भवन के अंदर और भवन के बाहर कैसे हो सकता हूँ? एक ही वक्त में मैं शराब पीऊं और शालीन भी रहूं, ये कैसे हो सकता है? आप ऐसा नहीं कर सकते।
जब आप बचाए जा चुके हैं तो आप प्रायश्चित के अंदर हैं और आपके पाप गिने नहीं जाते। क्या दाऊद ने नहीं कहा था कि धन्य है वह मनुष्य, परमेश्वर जिसके पाप नहीं गिनता और उसको पापी नहीं ठहराता। परमेश्वर अपने बच्चों के विरुद्ध पाप नहीं गिनता। ये सख्त बात है, दूध नहीं है कि पी जाएं, वरन ये पवित्र शास्त्र है। परमेश्वर धार्मिक लोगों के पापों को नहीं गिनता। परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा पहले जानने के कारण ऐसा करता है। वैसे उसकी इच्छा नहीं है कि कोई नाश हो, वरन वो चाहता है कि सभी पश्चाताप करें। मगर अनंत होने के कारण वो पहले से जानता है कि कौन उसके पास आएगा, कौन नहीं आएगा, और वह अपनी मंशा के अनुसार पहले से सब कुछ तय कर देता है। अगर वो ऐसा नहीं करता, पहली बात तो यह है कि उसने पाप को आने ही क्यों दिया। जबकि वो उद्धार करता था तो ऐसा क्यों किया? यदि कभी कोई पापी नहीं होता तो कभी कोई उद्धार करता भी नहीं होता। उसके अंदर जो गुण या फल थे वे कभी प्रकट नहीं होते। वह किस प्रकार से चंगाई देने वाला बना? वह कैसे चंगा करने वाला बन सका? क्योंकि उसने बीमारी को आने की आज्ञा दी ताकि वह खुद को चंगाई देने वाले के रूप में प्रकट कर सके। वह चंगाई देने वाला था। आप उसे इस रूप में कभी कैसे जान सकते थे? उसके गुण व फल कैसे प्रकट हो सकते थे? वह एक चंगाई देने वाले के रूप में कैसे जाना जा सकता था अगर कभी कोई बीमारी नहीं होती? उसे बीमारी को आने की आज्ञा देनी पड़ी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि रोमियो 8 अध्याय में पौलुस कहता है, मूर्ख मनुष्य, कुम्हार से कौन क्या कह सकता है? क्या मिट्टी कुम्हार से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या उसने फिरौन को इसलिए खड़ा नहीं किया था कि उसके द्वारा मिस्र में अपनी महिमा दिखाए? वो जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है और जिस पर चाहता है दया करता है। तो ये ना तो चाहने वाले की और ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। अतः इस बारे में आपको कुछ नहीं करना है, जरा भी आपको कुछ नहीं करना है। यदि ये अनुग्रह है, यदि ये मुफ्त दान है, तो आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने ये आपको दिया है और परमेश्वर की यही इच्छा है। ये वो चीज है जो परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ठहराई है। पवित्र शास्त्र बताता है कि हम जगत की उत्पत्ति से पहले से परमेश्वर के लेपालक पुत्र होने के लिए चुने गए हैं। तब जब परमेश्वर ने अपने विचारों में मेमने को जिबा किया और ये जगत की उत्पत्ति से पहले हुआ ताकि वह अपने गुणों को दिखा सके कि वह वास्तव में क्या है। जब मेमना बलि हुआ तो हम भी उसके साथ बलि हुए। जब परमेश्वर ने अपनी बुद्धि और विचारों में मेमने का लहू देखा और ये सब जगत की उत्पत्ति से पहले हुआ, तभी मेरे और आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए ये सब उसकी महान विचारधारा में घटित हुआ। वह अपरिमित है, अनंत है। अगर वो अनंत नहीं है तो उसने पाप को क्यों आने दिया? मैंने पूछा था कौन सामर्थी है, पापी या उद्धारकर्ता, कौन अधिक शक्तिशाली है? तब शक्तिमान व सामर्थी को अपने से कम वाले को आज्ञा देनी पड़ी थी और उसने ये सब अपनी महिमा के लिए किया। जब उसने लूसीफर को बनाया तो वो जानता था कि वह शैतान बन जाएगा। उसने उसको इसलिए रहने दिया कि वह दिखा सके कि वह उद्धारकर्ता मसीह है। उसने उसी तरह से सब कुछ होने दिया। अब देखें कि क्या पवित्र शास्त्र नहीं कहता है कि सब बातें मिलकर उसके लिए भलाई ही उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम करता है। अतः आप किस बात से डर रहे हैं? आइए हम उठकर अपना काम करें और सभी तरह की कलह से निबटने की हिम्मत बांधें। हम गूंगे पशु झुंड की तरह न चलें, जो भिखारी की तरह से तकतकाए जाकर चलते हैं और खुद को बहादुर समझते हैं। मुझे ये कविता पसंद है कि जिसका शीर्षक है खड़े हो जाओ। एक छोटी कविता है जो बचपन में लड़कपन में मेरी बहुत सहायता करती थी, कुछ इस प्रकार से है। रोमन शासन के दिनों में एक भला रोमी मनुष्य था जिसने एक डरपोक मेंढक की सी आवाज वाले कीड़े को किले के सामने खड़े ये कहते सुना, ओ यहाँ देवदार के पेड़ तले पूरी सुरक्षा है, इसे कोई भी हिला नहीं सकता। उस वीर ने कहा, नहीं, मैं अपनी समस्या का मार्ग ढूंढूंगा या मार्ग बना लूंगा। यही बात है, ये ठीक है। ये पवित्र शास्त्र सिखाता है कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। मगर उस दिन जब मैंने इस आराधनालय से कदम बाहर निकाले थे तो ये आसान नहीं था। हर कोई कह रहा था कि ये होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, तुम्हें सनकी जानकर जेल में डाल दिया जाएगा और सारी चिकित्सा संस्थाएं तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगी। मगर परमेश्वर ने कहा था ऐसा करो। पवित्र शास्त्र कहता था वही यीशु आज भी है, और आज प्रत्येक देश में जो आकाश के तले है बेदारी की आग जल उठी है। क्यों? इसके लिए उठ खड़े होइए। आप प्रत्येक दिन अपने काम को कैसे संभालते हैं? क्या आप उस काम से भयभीत हैं जो आपको करना है? क्या आप उस काम को करने के लिए उठ सकते हैं जो सामने है? क्या आपका मस्तिष्क थक कर खाली हो चुका है? मुझे इससे नफरत है। या क्या आप अपने काम पर झुकने जा रहे हैं जो बाकी है, या उसके करने में आपको भय लग रहा है? अगर ऐसा है तो अगले काम को करने में जुट जाओ। बस ये सोचिए कि आप उसे करने जा रहे हैं। अपने लक्ष्य पर कायम रहें। यकीनन जिस तरह दानियल परमेश्वर में स्थिर रहा, आप भी अपने मन में उद्देश्य लेकर उसी प्रकार स्थिर रहें। ये सब कुछ कहाँ घटित हुआ था, किस प्रकार हुआ था, इससे लोग क्या बन गए, क्यों हम सब नाश होने जा रहे हैं? भाई ब्रैनम मुझे ये सब समझाइए, आप ऐसा किस कारण से सोचते हैं कि ये सब कुछ यहाँ से मिटाया जाने वाला है? एक बार पहले भी मिटाया जा चुका है, नूह के जल पड़ने के समय, क्या ये ठीक है? अब देखिए कि ये कुछ गहरी सी बातें हैं और हम सब वचन पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक का तीसरा अध्याय निकालें। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मैं उत्पत्ति की इस पुस्तक में से दिखा सकता हूं हरेक मत, प्रत्येक वाद जो आज है उसकी शुरुआत उत्पत्ति में हुई थी। कितने लोग ये जानते हैं कि अंग्रेजी के शब्द जेनेसिस का अर्थ है शुरू होना, उत्पत्ति वास्तव में ऐसा ही है। हम शुरू में कैथोलिक चर्च को पाते हैं, यानी बाबुल को, जिसे निमरोद ने बसाया था। हम इसे पवित्र शास्त्र के मध्य में पाते हैं, हम इसे पवित्र शास्त्र के आखिर में पाते हैं। महिला प्रचारकों के बारे में खोजते हुए हम पवित्र शास्त्र के शुरू में ही पाते हैं कि वहाँ जड़ों से बने छोटे छोटे बुत थे जिनकी पूजा होती थी। कितने लोगों ने हिस्लोप द्वारा लिखित टू बेबीलोन्स नामक इतिहास की पुस्तक को कभी पढ़ा है? ठीक है, इन इतिहासों में खोज कर देखिए, उनके पास एक देवी थी। और तब आपको याद होगा कि याकूब तक ने अपने ससुर के देवता चुरा लिए थे और उसकी बेटी उन्हें अपने संग छिपाकर वहां जंगल में ले गई थी, जिससे बाद में सारा तंबू दूषित हो गया था। आइए अब हम उत्पत्ति की पुस्तक में से पढ़ें। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, सर्प उन सब में धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के बारे में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। देखा आपने, नई रोशनी खोज रहा है, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए कि किस तरह से आज ये लोग पवित्र शास्त्र में से वचन को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि क्या ये आसान नहीं है कि जल उडेल कर, छींटे देकर, इस तरह से या कुछ ऐसे ही काम चला लिया जाए? नहीं श्रीमान, परमेश्वर ने एक कार्यक्रम बनाया है और हमसे उम्मीद करी जाती है कि हम इस पवित्र शास्त्र के अनुसार चलें। तो जब उस स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। मैं एक मिनट के लिए यहाँ रुकना चाहूँगा। सभी चीजों का प्रारंभ होना आवश्यक है, आपका भी प्रारंभ है। इस बात पर मैं सब कुछ आधारित कर रहा हूँ। पिछली दो सभाओं में हमने इस बारे में यहाँ बातचीत करी है। आज प्रातः हमने पवित्र शास्त्र में से पीछे जाकर सारी बातों को साक्षात देखा था। जब परमेश्वर पृथ्वी को और इस पर पाई जाने वाली गैसों को बना रहा था, तो वो गैसें कैल्शियम और पोटाश और अन्य रूपों में बदलती चली गईं। इस तरह से परमेश्वर आपकी देह बना रहा था। वह एक महान रचयिता की तरह से भवन की रूपरेखा तैयार कर रहा था, जिस प्रकार कोई भवन निर्माता किसी कॉलोनी को बनाने के लिए भवन सामग्री जमा करता है। वह आपकी देह बना रहा था और उसकी विषय वस्तु बिछा रहा था। अपने दिमाग में, बुद्धि में, वो ठीक ठीक जानता था कि क्या क्या वह करने जा रहा है। मेरा ये हाथ परमेश्वर ने उस समय बनाया जब वह दुनिया को बना रहा था, मगर मेरी आत्मा को उसने दुनिया की सृष्टि से भी पहले बनाया जब कोई दुनिया नहीं थी। अब देखें कि यह हाथ, यह देह उसने तब बनाई जब उसने दुनिया बनाई, क्योंकि ये देह मिट्टी से बनी है और इसे मिट्टी में ही लौट कर वापस जाना है। परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया है, उसने ये सब कुछ अपनी योजना के महान नक्शे में पहले से अंकित कर रखा था। अब देखें, जब उसने धरती को बनाया तो मनुष्य को भी बनाया, और मनुष्य उस समय ठीक सा नहीं दिखा। अब आज प्रात हम इस सारे नाटक को देख चुके हैं। पिता धरती पर आया और उसने अपने स्वरूप में रचे अपने पुत्र को देखा और सब कुछ देखा। तब उसने उसके लिए एक सहायक, एक पत्नी बनाई। अब याद रखिए कि सारे प्राणियों के नाम आदम ने ही रखे हैं। इसी परमेश्वर ने सारे पशु, सारे मवेशी और सभी को बनाया।
और आज कालक्रम के करने वाले और बड़ी बड़ी विज्ञानी बुद्धि वाले पिछले 6000 वर्षों में उस खोई कड़ी की खोज में लगे हुए हैं जो प्रजाति आदम और पशुओं के बीच में थी। मनुष्य प्राणी जीवन की श्रेणी में आता है, हम ये बात जानते हैं। एक स्त्री केवल पुरुष का एक भाग है, उप उत्पादन है। औरत मूल रचना में शामिल नहीं थी। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कर ली थी और उसके बाद वर्षों अनेकों वर्ष बीत चुके थे, तब बाद में उसने आदम की पसली को निकालकर उससे स्त्री को बनाया। आदम ने सारी चीजों के नाम रख दिए मगर उसके अपने लिए कोई सहायक न मिला था। अतः परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बनाया, उसकी पसली निकाली, वहाँ मांस भर दिया और आदम के लिए एक सहायक बना दिया। और मनुष्य आत्मा में नर और नारी दोनों था, और एक स्त्री बस पुरुष का ही एक अंग है। जब पुरुष किसी को अपनी पत्नी होने के लिए ले लेता है और अगर वो औरत सही रीति से उसकी पत्नी है, परमेश्वर की ओर से दी गई पत्नी है, तो वह बस उसी का एक भाग है। यही वजह है कि विवाहित जीवन में आप में नैतिक हिचक पाई जाती है, क्योंकि आप बाहर जाते हैं, किसी भूरी नीली आंखों वाली या कुछ इसी तरह की सुंदर लड़की को देखते हैं और उसके दीवाने हो जाते हैं। जब आपकी पत्नी को पहली संतान हो जाती है और वह आपको बूढ़ी और झुर्रीदार दिखाई देने लगती है, तब आप दांत दिखाने लगते हैं और उसे ठोकर मारना चाहते हैं। और आप में से कुछ महिलाएं ऐसे छोटे लड़कों को देखते ही जिनके चिकने बाल नीचे तक झूल रहे हैं और मम्मी के सिर के तेल में आधे डूबे हैं और घुंघराले हैं, मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि ये पतन का कारण बन जाता है। मगर होता क्या है, ये क्या है, आप उसके लिए बेताब हो जाते हैं। आपको पहले प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री आपका ही एक भाग है। और अगर आपने किसी स्त्री को सीने से लगाकर अपनी पत्नी बनाया है और उसने अपनी छाप आप पर छोड़ी है, हम इस बात को ऐसे कहेंगे ताकि आप समझ सकें। और तब दूसरी कोई भी महिला उस छाप में सही नहीं बैठेगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा। आप इस बात को याद रखिए, आप जो कि दूसरे की पत्नी के संग बाहर घूमने जाते हैं। मैंने आज शहर में उस बेचारी छोटी लड़की के बारे में सुना है, मैं उसे जानता हूँ, और किसी जुआरी ने उसे बढ़िया वस्त्र और अन्य चीजें खरीद कर दी और उसके जीवन से खेलने का प्रयास किया। एक चूहा ही इस तरह के काम कर सकता है, ऐसा मनुष्य तो मानव भी नहीं कहा जा सकता। आप देखिए कि कुत्ता भी इतना गिरा हुआ नहीं होता, फिर भी आप कुतिया को फुअर कहते हैं। उसके पास जेफरसनविल में रहने वाली आधी से अधिक महिलाओं से भी अधिक नैतिकता होती है, और आप मादा सुअर को फुअर स्वरी कहकर पुकारते हैं। उसके पास संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुत सी महिलाओं से अधिक नैतिकता होती है। यह एकदम ठीक बात है। अब मुझे पता है कि ये बात बहुत सख्त और सपाट है, और मैंने आपसे कहा था कि मैं ऐसा कहूँगा जो घर तक पचाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों को जानें और ये सच हैं। आज स्त्रियाँ जानती तक नहीं कि नैतिकता क्या होती है। कहा गया कि मेरे विवेक को चोट मत पहुँचाओ। भाई, आप में विवेक है ही कहाँ? ध्यान दें। हाँ श्रीमान, आप जानिए कि क्या ठीक है और क्या गलत। अब ध्यान दें कि जब इस मनुष्य आदम को रचा गया तो परमेश्वर ने उसकी आत्मा को अलग कर दिया और उसने उसमें से एक उसकी एक पसली निकाल कर उससे एक स्त्री बना दी, और फिर उसने उसमें से औरत वाली सुरुचिपूर्ण आत्मा निकाल कर उससे एक स्त्री को बना दिया, और उसने मनुष्य को पुल्लिंग व स्थूल और ताकतवर बनाया। और जब आप किसी पुरुष को हाथ के नाखूनों को स्त्री की तरह रख रखाव करते हुए पाएं या नाखूनों को सजाते पाएं, और आप देखें कि एक हाथ के चार और दूसरे के पांच नाखून बढ़े हुए हैं और चिकने बाल लहराए हैं और चेहरा मोहरा सुंदर सलोने प्यारे लड़कों का सा है जो मुंह बाए घूमते फिरते हैं, तो बस आप याद रखिए बहन कि उस नस्ल में कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ गड़बड़ी है। अच्छा होगा कि उस पर नजर रखें। और जब आप एक महिला को मुंह में सिगरेट दबाए देखें और जो ओवरकोट पहने आपसे यूं कहे कि मैं बताती हूं कि ये क्या है, मेरे भाई आप उस पुराने पित्त से सावधान रहें, उसके संग कुछ गड़बड़ है। एक स्त्री से आशा करी जाती है कि वे स्त्री रहेगी और स्त्रियों की तरह से वस्त्र पहनेगी। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने पुरुष को अलग और स्त्री को अलग और दूसरे प्रकार का बनाया था, और जब परमेश्वर ने मनुष्य को वस्त्र पहनाए तो उसने पुरुष को एक तरह के और स्त्री को दूसरे प्रकार के वस्त्र पहनाए। और पवित्र शास्त्र कहता है कि एक स्त्री को पुरुष के वस्त्र पहनना लज्जा की बात है। और आप महिलाएं, आप ये पुरानी चाल की मर्दाना पैंट और दूसरे वस्त्र पहनकर बाहर घूमती हैं, आप इस पहनावे को क्या कहती हैं? निकर बोकर।
क्या कहते हैं उसे वे? हाँ यही है।
नहीं नहीं, वो हाफ पैंट नहीं है, उसके पैंचे लंबे होते हैं।
पैडल पुशर्स, ओरास एंड डंगरीज।
आप कहती हैं कि ये तो महिलाओं के लिए है।
मैं कहता हूँ आप गलती पर हैं। महिलाएं इस तरह के वस्त्र नहीं पहनती।
औरतें पहन सकती हैं मगर महिलाएं नहीं, ये ठीक बात है।
पवित्र शास्त्र कहता है कि एक स्त्री के लिए ये लज्जा की बात है कि वह पुरुष के वस्त्र पहने तथा एक पुरुष स्त्री के वस्त्र पहने।
और पुरुष प्रत्येक दिन अधिक स्त्रीयोचित बनता जा रहा है जबकि औरतें अधिक पुरुषोचित बनती जा रही हैं। मामला क्या है?
हम थोड़ी सी देर में पवित्र शास्त्र में से इसे खोजेंगे।
स्त्रियां अब स्त्रियां नहीं रही हैं। मेरा मतलब आप मसीही स्त्रियों से नहीं है, वरन आम स्त्रियों के लिए कह रहा हूँ।
वे पुरुषों की तरह से व्यवहार करना चाहती हैं, पुरुषों की तरह अपने बाल रखती हैं, और शराब की बार पर इस तरह से हाथ टिकाए गीत गाती हैं कि परमेश्वर अमेरिका को आशीष दे, और सिगरेट उनके मुंह के कोने में दबी होती है।
सड़क पर जाइए, राजमार्ग पर देखिए, ऐसा ही है।
हमने खुद गिना है।
महिला ड्राइवर्स सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
मैं और बिली पाल अपने इस आखिरी दौरे में देश भर में 6 माह तक घूमे थे, तो मैंने इस बात की गिनती करी कि मार्ग में कितनी दुर्घटनाएं घटित होती हैं,
और सड़क की उन 300 दुर्घटनाओं में से कितनी महिला ड्राइवर्स ने करी होंगी, इस बात का अनुमान लगाइए।
उनमें से सिर्फ 19 पुरुषों के द्वारा थीं, और उनमें 280,
मेरा ख्याल है कि 281 महिला चालकों के द्वारा हुई थी।
महिला वाहन चालक,
मैं ये नहीं कहता कि अच्छी वाहन चालक महिलाएं हैं ही नहीं,
मगर वह किधर भी घूम सकती हैं।
और उनकी गलती पर आप उन्हें थामने की कोशिश करें तो क्या होता है?
वह एक तरह से सुंदर सी दिखने वाली महिला हो, पुलिस वाले को देखकर वह उंगली से बालों को ऊपर को उछालेगी।
क्यों, फिर क्या होगा?
वो बस इतना कहेगा आप गलती पर हैं,
मगर उन्हें दंडित करने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है।
उस दिन एक टैक्स के मुकदमे में से मैं वापस लौटकर आ रहा था, तब भी यही प्रमाणित हुआ
कि हमारे पास कानून नाम की कोई चीज नहीं है।
कोई ताज्जुब नहीं कि इंग्लैंड के उस महान लॉर्ड ने कहा था कि एक प्रजातंत्र बिना लंगर के बहने का नाम है,
और ये ठीक बात है कि लोग स्वयं को साफ छवि वाला दिखाकर चुनाव लड़ते हैं।
प्रजातंत्र सड़ चुका है, और साथ ही नेता भी और बाकी सभी भी, सभी कुछ सड़ चुका है।
अब परमेश्वर को और कुछ नहीं करना है, बस सभी कुछ नाश करना है, जैसा कि उसने कहा है कि वो करेगा और सभी कुछ नया बनाएगा।
अब ध्यान दें कि हम उसकी आमद के कितने नजदीक पहुंच चुके हैं।
अब देखिए कि उसने आदम के लिए एक सहायक बनाया, एक स्त्री बनाई जिसे उसकी सहायक बनना था।
अब यहाँ देखिए कि अभी तक मुझे एक भी प्रचारक नहीं मिला जो मेरी बात से सहमत हो।
वे लोग इसको घुमाकर कुछ और अर्थ निकालने की चेष्टा करते हैं, मगर मुझे उनकी बात अर्थहीन लगती है।
वे ये कहने की कोशिश करते हैं कि आदम और हव्वा ने कुछ सेब खाए थे।
भाई, मैं ये बात मजाक में नहीं कह रहा हूँ, मगर मैं सही में ये कह रहा हूँ,
अगर सेब खाने से महिलाओं को इस बात की समझ मिलती है कि वे नंगी हैं, तो अच्छा होगा कि हम फिर से उन्हें सेब खिलाएं।
आप जानते हैं कि ये ठीक है।
आप जानिए कि सेब खाना ऐसा नहीं था जो उन्हें ये समझ देता कि वो नंगे हैं।
वास्तव में ऐसा नहीं था, इसकी गहराई में बात वासना की थी, क्योंकि जब उन्होंने इस निषेध फल को खाया तब उन्हें पता चला कि वो नंगे हैं, इसलिए उसमें वासना का होना ही जरूरी था।
क्या स्त्री फलदायी वृक्ष नहीं है?
क्या आप अपनी माँ के फल नहीं हैं?
यही वो फल था जिसे खाना मना था।
अब यहाँ एक बड़ी बात हुई है।
मानव प्राणी पहले क्या था, इसकी खोज में विज्ञान मानव के आसपास के प्राणी तक पहुंचने की चेष्टा करता रहा है।
उन्होंने पुरानी हड्डियों को खोद कर निकाला, कंकालों, खोपड़ियों, हाथों, मस्तिष्क की हड्डियों आदि को लेकर अध्ययन किया कि क्या जानवरों की कोई नस्ल आदमी से मिलती जुलती थी,
और उन्होंने ये पाया कि सबसे निकट तक जो प्रजाति मानव से मिलती थी वह चिंपैंजी है।
मानव के सबसे निकट की वही एक प्रजाति है, मगर मानव प्राणी जो सब प्राणियों में श्रेष्ठ बनाया गया है, चिंपैंजी से उसका कुछ लेना देना नहीं है।
सबसे निम्न जीवन आकार मेंढक का है, और सबसे बड़ा व ऊंचा मानव प्राणी है।
परमेश्वर ने नीचे से शुरू कर सबको ऊपर की ओर उठाते हुए बड़े आकार देकर बनाया, और अंत में उसने मानव को ठीक अपने स्वरूप में बनाया।
उसने चिड़ियों, पशुओं से लेकर और ऊपर तक सभी को बनाया, और अंत में उसने परमेश्वर के स्वरूप पर मानव को रचा।
उसने मनुष्य को उसी स्वरूप में बनाया, और वह सबसे ऊंची किस्म का है।
सबसे निम्न प्रजाति के रूप में उसने टेडपोल बनाया, जो मेंढक बन गया, और दूसरी दूसरी प्रजातियां बनी।
अब देखिए कि मानव तक जो प्रजाति पहुंचती हो उसके बीच की कड़ी गायब है, जिसे वे पा ही नहीं सकते।
अब वचन पर ध्यान दीजिए। आप में से बहुत से इस बात पर असहमत होंगे, मगर मैं चाहता हूं कि आप इस बात को दिमाग में रखें, विचार करें, भ्रांत धारणा नहीं बनाएं और इस बात को सुनें। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से अभी कुछ समय पहले डॉक्टर डी हान का प्रवचन सुन रहे थे। एक अच्छी गुण योग्यता वाले भी एक अच्छे बैप्टिस्ट भाई हैं। मैं यकीनन उनकी प्रशंसा करता हूँ। उनके पास काफी समझ और बुद्धि है और ज्ञान है जो मैंने शायद ही किसी और में देखा हो, क्योंकि वे डॉक्टर ऑफ डिविनिटी और मेडिकल डॉक्टर हैं। वे डॉक्टर ऑफ साइंस वैज्ञानिक डॉक्टर हैं और बड़े अच्छे मनुष्य हैं। मगर वो कहते हैं कि जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, इसका मतलब बताते हुए वे जोसेफस इतिहासकार का पक्ष लेते हुए कहते हैं कि परमेश्वर के पुत्रों ने उन देहों में प्रवेश कर लिया और उनको अपनी पत्नियां बना लिया। उस समय नौ देश में राक्षस रहते थे और जिसे चाहा उसे ब्याह लिया और उसके संग रहने लगे। परमेश्वर के पुत्र गिराए हुए स्वर्गदूत थे, ऐसा डॉक्टर हन कहते हैं, और उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और वे स्वर्गदूत गिरी हुई पापी दशा में थे। उनमें वासना प्रबलता से जाग उठी और उन्होंने स्वयं को देहधारी बना लिया और उन शरीरों में रहने लगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो वे दिव्य चंगाई और सभी कुछ को बर्बाद और गंदा कर सकेंगे। अगर शैतान कुछ रच सके तो वह फिर परमेश्वर के तुल्य हो गया। शैतान कुछ सृष्टि नहीं कर सकता। मुझे किसी एक जगह पर लिखा दिखाएं कि शैतान कुछ बना सकता है। वह कुछ नहीं बना सकता, वह उसको बस दूषित कर सकता है जो पहले से बना है। वह रचयिता नहीं है, वह केवल दूषित करने वाला है, मिलावट करने वाला है। ठीक है, तब क्या हुआ? देखिए, मेरी धारणा ये है, वह खोई हुई कड़ी यहाँ है। अब देखें कि उनके पास चिंपैंजी है, मगर आप चिंपैंजी और स्त्री के माध्यम से संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। आप किसी भी पशु व मानव के मिलन से संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, वह मेल नहीं खाएगा। आप किसी भी पशु का खून मानव देह में नहीं डाल सकते। जब मैं अफ्रीका में था तो किसी ने मुझसे कहा था कि इन बेचारे अश्वेत लोगों से इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है मानो वे जानवरों से अधिक कुछ ना हों। मैंने कहा, श्रीमान फिर से कहिए, वे लोग आप लोगों की तरह वरन शायद आप लोगों से भी कुछ अधिक ही मानव हैं। मैं आपको बताता हूं कि जब आपकी विचारधारा इस तरह की होती जा रही है तो जानिए कि आप पशु होते जा रहे हैं। मैंने कहा, वह मनुष्य चाहे हुक्म के इक्के की तरह काला हो, चाहे कद्दू की तरह पीला या नील की तरह से नीला, वह अपना लहू आपकी देह में डालकर किसी समय आपका जीवन बचा सकता है, मगर आप एक पशु का लहू अपनी देह में कभी नहीं ले सकते। यकीनन ये अश्वेत मानव प्राणी हैं। सिर्फ इसलिए कि किसी की चमड़ी काली, कोई भूरी, कोई पीली या कोई सफेद है, बेकार की बात है, इससे कुछ भी मतलब नहीं है। पवित्र शास्त्र बताता है कि परमेश्वर ने एक ही लहू से सारे मनुष्यों को बनाया है और यह बात एकदम ठीक है। जिन जिन स्थानों में हम रहते हैं उसी से रंग बदल जाते हैं और इससे कुछ मतलब नहीं होता है। परमेश्वर ने सारे देशों के जितने भी मनुष्य हैं सभी को एक ही लहू से, एक ही मूल से बनाया है। आज कोई भी अश्वेत ये नहीं कह सकता कि चीन के उस पीली चमड़ी वाले से मुझे कुछ सरोकार नहीं है। वह आपका भाई है। और आप श्वेत लोगों, आप अश्वेतों से ये नहीं कह सकते कि मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। वह आपका भाई है, एकदम ठीक बात है। अब ध्यान दें कि वहाँ जो हुआ था वह ये है। मैं इस बात का विश्वास करता हूँ और पवित्र शास्त्र इस बात की पुष्टि करता है कि वह सब करने वाला सर्प था। सर्प ही वह प्रजाति है जो कि मनुष्य व चिंपैंजी के मध्य की कड़ी है जो अब नहीं मिलती। क्योंकि ध्यान से सुनिए कि सर्प तब रेंगने वाली प्रजाति का नहीं था, वह धरती पर पाए जाने वाले सारे पशुओं में सबसे अधिक धूर्त था। अब देखें कि आज मैंने सभी जगह से बहुत से शब्दकोश इकट्ठे करके ये देखा कि इस शब्द सबटिल या धूर्त का क्या अर्थ है। इसका मतलब है चतुर, फुर्तीला होना, कपटी या धूर्त होना। और इब्रानी भाषा में इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है MAHAH, महा, और इसका सही अनुवाद है जीवन सिद्धांत का सत्य ज्ञान होना। अब आइए एक मिनट इस पर ध्यान दें। वह फुर्तीला है, धूर्त है, फिर भी सर्प कहकर पुकारा गया। मगर याद रखिए कि वह धरती पर मौजूद सारे पशुओं से अधिक चतुर, फुर्तीला और धूर्त था और मनुष्य से काफी मिलता जुलता था। वो रेंगने वाला पशु नहीं था। श्राप मिलने के बाद वह रेंगने वाला बना। पवित्र शास्त्र बताता है कि वह सारे पशुओं में से सबसे सुंदर था। श्रापित होने के बाद श्राप भी उसकी सारी सुंदरता नहीं छीन सका। आज भी सर्प के शानदार रंग सुंदर हैं, शानदार हैं, उसमें चतुरता और समझदारी है। श्राप ने भी इनको उससे अलग नहीं करा। मगर याद रखिए कि परमेश्वर ने कहा कि उसकी टांगे ना रहें और वह पेट के बल रेंग कर चला करे। और सर्प के अंदर आज आप एक भी हड्डी ऐसी नहीं पा सकते जो मानव हड्डियों से मेल खाती हो, और यही वजह है कि विज्ञान भ्रमित है। मगर तथ्य और असली बात यही है, परमेश्वर ने इसे समझदारों और बुद्धिमानों की नजर से छिपा रखा है, मगर वायदा किया था कि अंत के दिनों में वह इन्हें अपने पुत्रों को प्रकट करेगा जब उसके बेटे और बेटियां प्रकट होंगे, जब वे पुत्र प्रकट होंगे जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर के संग आनंदित होकर जय जयकार करते थे। जब अंत के दिनों में परमेश्वरत्व व अन्य गहरी बातों के भेदों का प्रकाशन दिया जाएगा, तब परमेश्वर इन बातों को अपने पुत्रों के द्वारा प्रकट करेगा। आप जानते हैं कि पवित्र शास्त्र ऐसा ही सिखाता है और हम वहीं आ पहुंचे हैं। यही वजह है कि परमेश्वर इन बातों को हम पर जाहिर कर रहा है। परमेश्वर अपने पुत्रों को प्रकाश में लाकर उन्हें प्रकट कर रहा है। वह मानव बुद्धि की सीमाओं से परे जाकर उन्हें आत्मिक प्रकाशन के द्वारा ये सब बता रहा है। क्या हमने पवित्र शास्त्र में ऐसा नहीं पढ़ा कि जिसके पास बुद्धि हो समझे? यह नहीं कि उसे किसी धार्मिक स्कूल में सीखा जाए, वरन परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर वह बुद्धि लेनी है जिसे परमेश्वर अपनी मंशा से उसे देगा। परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो रहे हैं, यहाँ वो सर्प है। अब मैं आपको अपनी विचारधारा बता रहा हूँ कि वह सर्प क्या था। हम सबसे छोटी प्रजाति मेंढक से लेकर ऊपर पहुँचे, ऊपर बंदर और आखिर में चिंपैंजी तक पहुँचे, और फिर सीधे चिंपैंजी से मनुष्य तक पहुँचते हैं और ताज्जुब करते हैं कि बीच में क्या था। विज्ञान कहता है कि जरा रुकिए, हम एक स्त्री व बंदर या चिंपैंजी के माध्यम से या पुरुष व चिंपैंजी के माध्यम से नस्ल बनाने की कोशिश करें, कामयाब नहीं होंगे। किसी भी पशु से नस्ल बनाने की चेष्टा करें, सफल नहीं होंगे। लहू मेल नहीं खाएगा, आपका लहू एकदम भिन्न प्रकार का है। जो लहू मनुष्य के लहू में मिल जाए ऐसा होता है, मगर आज विज्ञान को वह पशु नहीं मिल सकता जिसमें ऐसा लहू हो। ओह हालेलुया, मैं अब धार्मिकता से आत्मविभोर सा हो उठा हूँ। ध्यान दीजिए कि क्यों परमेश्वर ने यह उनसे छिपाया। सर्प में आज एक भी ऐसी हड्डी नहीं है जो मानव देह की हड्डियों से मिलती हो। परमेश्वर ने इस तथ्य को इतना दूर रखा कि चतुर मनुष्य उसे खोज ही न सके। और मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि वह चतुर मनुष्य कहाँ से आए, अब कहाँ है। देखिए कि यह प्रकाशन विज्ञान नहीं दे सकता, यह तो आत्मिक प्रकाशन के द्वारा मिलता है। जैसे तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यीशु ने कहा इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर कभी प्रबल ना होंगे। आत्मिक प्रकाशन। किस प्रकार से हाबिल ने जाना कि मेमना कुर्बान करना है, जबकि कैन ने फल फूल आदि भेंट चढ़ाई? हाबिल को ये आत्मिक प्रकाशन दिया गया था। इसे आप धर्म शिक्षण स्कूलों में नहीं पा सकते, नामधारी गिरजों में नहीं पा सकते, आपको ये स्वर्ग से मिलता है। अब इस सर्प को देखिए, इस सर्प को देखें जो पहले था। आइए अब हम उसका एक चित्रण करें। वह लंबा चौड़ा है और वह चिंपैंजी और मनुष्य के बीच की प्रजाति है। और शैतान लूसीफर इस बात को जानता था कि केवल उसी का लहू मनुष्य के लहू में मिलाया जा सकता है। केवल वही एक प्राणी था जिससे वह संपर्क कर सकता था। वह चिंपैंजी से संपर्क नहीं कर सकता था क्योंकि उसका लहू मानव लहू से मिल नहीं, वह दूसरी प्रजातियों से संपर्क नहीं कर सकता था, वह भेड़ या घोड़े से संपर्क नहीं कर सकता था, वह किसी और पशु से संपर्क नहीं कर सकता था, उसे इस सर्प से ही संपर्क करना था। आइए हम उसे देखें कि वह कैसा दिखाई देता है। बहुत लंबा चौड़ा प्राणी है, प्रागैतिहासिक दैत्य है। आज जो बड़ी बड़ी हड्डियां मिलती हैं, वे उसी काल की हैं। मैं आपको पवित्र शास्त्र में से ये सब दिखाऊंगा, अब ध्यान से देखिए। ठीक है, ये लंबा चौड़ा प्राणी, हम कहें कि वह 10 फुट लंबा था, बड़े चौड़े कांधे थे, मनुष्य की तरह से दिखाई देता था। उसका लहू नीचे से ऊपर की उसकी नस्ल तक आते हुए अनेकों पशुओं से मिलकर उच्च श्रेणी का बनता चला गया था। आप पशुओं को आपस में मिला सकते हैं और उनका लहू उच्च से उच्चतर होता चला जाएगा और अंत में वह मनुष्य के लहू के पास तक पहुंच जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने आखिरी कड़ी को बीच से निकाल दिया। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि विज्ञान उस खोई कड़ी को नहीं पा सकता? आप सभी इस बात को जानते हैं। क्यों? क्योंकि वह कड़ी यह सर्प है। यहाँ है वो लंबा चौड़ा आदमी, और शैतान नीचे उतरकर आता और कहता है कि मैं प्रेरणा दे सकता हूँ। याद रखिए कि जब आप किसी ऐसी महिला को देखते हैं या घूरते हैं और उसके संग व्यवहार करते मेल जोल बढ़ाते हैं जो आपकी पत्नी नहीं है, तो फिर आप शैतान के द्वारा ही अभिषिक्त हैं। अब ध्यान दीजिए कि शैतान नीचे उतर आया और सर्प में समा गया। उसने हव्वा को अदन की वाटिका में नंगी अवस्था में देखा और उसने बीच में स्थित फल के बारे में बातचीत करी। मध्य का मतलब है बीच में, आदि आदि। आप जानते हैं कि सभा में सभी आयु वर्ग के लोग हैं, आप खुद समझिए। उसने कहा ये मनभाव है और देखने में अच्छा है, और उसने क्या किया? उसने हव्वा के संग प्रेम प्रसंग बढ़ाए और पति की तरह उसके साथ रहने लगा। हव्वा ने देखा कि ये सब अच्छा है, अतः वो अपने पति आदम के पास गई और उसे बताया, मगर तब तक वह शैतान के द्वारा गर्भवती हो चुकी थी। और उसने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कैन था, और वह शैतान का पुत्र था। अब आप कहेंगे कि ये गलत है। ठीक है, हम अभी देखेंगे कि गलत है या सही। मैं तेरे वंश और इस सर्प के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। क्या? सर्प के वंश में? उस स्त्री का बीज या वंश था और इस सर्प का भी बीज या वंश था। और वह तेरा सिर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पर ब्रूस या कुचलने का वास्तविक अर्थ है प्रायश्चित करना। अब यही है आपका सर्प वंश। अब ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर वो दो मनुष्य इस प्रकार से आए। वह सर्प जो वहाँ था और डील डॉल में लंबा चौड़ा था, वह आदम की पत्नी से व्यभिचार करने का दोषी था। आज पाप कहाँ पाया जाता है? आज जो कुछ जिस बुरी अवस्था में है उसके पीछे का कारण कौन है? अब मैं सोचता हूँ कि जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ यकीनन आप उस बात को पकड़ पाएंगे। और यही बात थी। और जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने हव्वा और आदम को बुलाया। आदम ने कहा मैं नंगा हूँ। परमेश्वर ने पूछा किसने तुझे जताया कि तू नंगा है? और जैसा सेना में होता है वे बात को एक दूसरे पर टालने लगे। जो स्त्री तूने मुझे दी उसी ने ये किया है, उसी ने मुझे ऐसा करने को उकसाया था। हव्वा ने क्या यूँ कहा कि सर्प ने मुझे सेब खाने को दिया? ठीक, प्रचारक महोदय जरा ध्यान से देखिए। ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया। क्या आप जानते हैं कि बिगाइल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है डिफाइल्ड, डिफाइल करना, दूषित करना। और उसे सर्प ने दूषित कर दिया था, उसने उसे सेब नहीं दिया था। सर्प ने मुझे धोखा दिया और दूषित कर दिया है और तब श्राप दिया गया। परमेश्वर ने कहा क्योंकि तूने अपने पति की बात सुनने के बजाय सर्प की बात सुनी, तूने दुनियावी जीवन ले लिया। मैं तेरी पीड़ा और गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, वगैरह वगैरह। और आदम तूने मेरे वचन के विरुद्ध जो अपनी पत्नी की बात सुनी, मैंने तुझे मिट्टी में से सबसे ऊंची नस्ल का बनाया था, अब तू फिर मिट्टी ही में मिल जाएगा। और सर्प तूने जो ये किया है, अब तेरी टांगे नहीं रहेंगी और तू पेट के बल रेंग कर सारे जीवन भर चला करेगा। लोग तुझसे नफरत करेंगे और तेरा भोजन मिट्टी ही होगा। यही वो बात है, ये है आपकी वो खोई कड़ी। अब केन को लीजिए, उसकी आदतों और प्रकृति को देखिए। यहाँ अब केन आता है। वह क्या है? वह चतुर व्यापारी है, वह खेती करता है, फुर्तीला, बुद्धिमान, धार्मिक, अत्यंत धार्मिक है। उसके गुणों और फल पर ध्यान दीजिए। मेरे साथ बस थोड़ी देर और इस चित्रण में घूमिए और देखिए। देखिए वो आया, वह जानता है कि उसमें काफी नैतिकता है। वह गिरजे जाना चाहता है, वह अपने लिए गिरजा बनाता है, वेदी बनाता है, अपनी भेंट तैयार करता है, एक वेदी बनाता है, अपने फूल उस पर सजाता है, खेत के फल फूल परमेश्वर को भेंट चढ़ाता है। मानो कहता है कि प्रभु मुझे मालूम है कि हमारी माता ने सेब खाए थे, इसी से ये पतन हुआ है। उसके आज के वंश में भी कुछ लोग इसी प्रकार के विचार रखते हैं। यही बताता है कि यह सब कहां से आया है। वह अपने सेब आदि लेकर आया और उसने वेदी पर रख दिया और कहा इससे प्रायश्चित हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा वह सेबों का मामला नहीं था, परंतु आत्मिक प्रकाशन के द्वारा हाबिल जानता था कि वह लहू का मामला था। इसलिए उसने एक मेमना लिया और मेमना लेके आया, उसका गला तराशा और वो मर गया। और परमेश्वर ने कहा ये ठीक है, इसी से ऐसा हुआ है, लहू ही इस पतन का कारण है। आप जानते हैं कि मैं किस लहू की बात कर रहा हूँ। ठीक, लहू ही था जिससे ये सब हुआ था। अब आप ध्यान दें कि जब कैन ने देखा कि उसका वह पवित्र पाखंडी सरी का भाई परमेश्वर की दृष्टि में मान्य ठहरा है और उसकी भेंट ग्रहण करी गई है और अद्भुत चिन्ह और काम वहाँ प्रकट हो रहे हैं, तो वह अपने भाई के प्रति जलन से भर गया। उसने कहा इस प्रकार की सभाओं को हम तुरंत बंद करवा देंगे। उसके भाइयों और उसके बच्चों को आज देखिए। उसने सोचा मैं उससे चतुर हूँ और उसे गुस्सा आया। ये क्रोध कहाँ से आया? क्या आप कहेंगे कि वह क्रोध असली लहू से आया? उसने अपने भाई को मार दिया, वह कातिल था। क्या आप परमेश्वर को कातिल कहेंगे? आदम परमेश्वर का पुत्र था। पवित्र शास्त्र बताता है कि शुरू में पूर्ण शुद्धता और पवित्रता की अवधि में आदम परमेश्वर का पुत्र था। आदम परमेश्वर का पुत्र था और वह जलन और शत्रुता उस शुद्ध वंश धारा से नहीं आ सकती थी, उसे किसी और स्थान से ही आना था। और वह शैतान के माध्यम से आई जो कि शुरू से ही कातिल रहा है। पवित्र शास्त्र बताता है कि वह आरंभ ही से झूठा और हत्यारा है और वह वहाँ था और उसने अपने भाई को घात कर दिया। यह एक प्रकार से मसीह की मृत्यु का नमूना या प्रतिछाया थी और इस धारा में से परमेश्वर ने शेत को उसकी जगह उत्पन्न किया। ये मसीह की मृत्यु, दफन होना और फिर जी उठने का प्रतीक था। और देखिए अब यहाँ आपके वे दैत्य या दानव आते हैं। तब कैन नॉर्थ के देश में जाकर बस गया। यदि कैन का बाप एक बड़ा दानव था तो कैन कैसा रहा होगा? अपने पिता के समान। और वह नौत के देश में गया और अपनी एक बहन को ब्याह लिया। केवल यही एक तरीका था, क्योंकि और कोई स्त्री हवा के अतिरिक्त और किसी माध्यम से आ ही नहीं सकती थी। वे दावा करते हैं कि उनके 70 पुत्र और पुत्रियां हुईं। लोग पूछते हैं कि अगर वहां कोई स्त्री नहीं थी तो? देखिए, पवित्र शास्त्र में स्त्रियों की उत्पत्ति का कोई लेखा नहीं है, बस पुरुषों की उत्पत्ति का ब्यौरा है। यदि वहां और स्त्रियां नहीं थी तो हव्वा की मृत्यु के बाद मानव जाति समाप्त हो गई होती। हव्वा की संतानों में लड़कियों को होना ही था। कैन को अपनी ही बहन से विवाह करना पड़ा। वह नाज की भूमि में गया और अपनी बहन को पत्नी बना लिया, और जब उसने उससे विवाह किया तो जो संतानें उत्पन्न हुई वही वे दानव थे जो परमेश्वर के स्वर्ग से गिराए पुत्र थे, जो अपने पिता शैतान से कैन के माध्यम से जन्मे थे। यही आपकी खोई हुई कड़ी है। अब सर्प के बीज या वंश को देखिए। देखिए, याद रखिए कि सर्प का वंश धार्मिक है। कुछ मिनटों तक सर्प वंश को देखिए, अब वो सामने आ रहा है। यही है सर्प का वंश। उन्हें क्या हुआ था? अब मुझे कुछ हवाले पढ़ने की आज्ञा दें। मैंने आज दोपहर ही उन्हें लिखा था। हाविल के वंश की पंक्ति से कौन उत्पन्न हुए? इसे सुनिए। ठीक है, हाविल आया। हाविल के बाद शेत आया। शेत के बाद नूह। नूह के बाद शेम। शेम के बाद इब्राहिम। इब्राहिम के बाद इजहाक। इजहाक के बाद याकूब। याकूब से यहूदा। यहूदा से दाऊद। दाऊद से मसीह आया, जो कि सिद्ध था। वहाँ पीछे देखिए कि परमेश्वर का आत्मा किस प्रकार से हाबिल में था। देखिए कि किस तरह से वो शेत में था। देखें कि किस तरह से वह यहूदा में था। देखें कि किस प्रकार से वो दाऊद में था। देखिए कि वही आत्मा इन सारे धार्मिक बीजों या वंशों के द्वारा किस तरह से पुकारता चला आया है। इससे कुछ मतलब नहीं कि उन्होंने क्या किया, वे सब पहले से चुने लोग थे। याकूब को देखिए, जिसने, मैं इस बात को अपवित्रता वाले भाव से नहीं कह रहा हूँ, मगर याकूब संकोची सा बुद्धू सा लड़का था जो हमेशा अपनी माँ की दुम के पीछे लगा रहता था, और उसने अपने शरीर पर खाल लपेटी और पिता को धोखा देकर पहलौठी की आशीषें ले आया, मगर ये सब उसे जगत की उत्पत्ति से भी पहले दिया गया था। वास्तव में ऐसा ही था। वह वहाँ गया तो उसने अपने ससुर से झूठ बोला। उसने चिनार की धब्बेदार लकड़ी पशुओं के जल में डालकर उन्हें डराया, जबकि वे गर्भवती थीं, ताकि उन मादा पशुओं के चितकबरी संतानें हों। इस प्रकार से वह धोखा देकर उन मवेशियों को हत्या सका। इसमें परमेश्वर ने उसे आशीष दी। यह ठीक बात है, पर हाय जो याकूब के विरुद्ध कुछ भी कहता है। क्या आप जानते हैं कि उस झूठे नबी बिलाम ने क्या कहा था? वह सही भविष्यवाणी कर रहा था। उसने कहा था कि जो इसराइल को आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और जो कोई उसे शाप देगा मैं उसे शापित करूंगा। याकूब को उसने सुनसान मरी भूमि में पाया। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैला कर उसको अपने पंखों पर उठा लिया है। हालेलुया! ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, यहोवा कहता है। देखिए कि उसका पवित्र आत्मा इन लोगों में से होकर सिद्धता की ओर बढ़ता रहा। पवित्र आत्मा मसीह में सिद्ध देह तक आने के लिए इन लोगों में से होकर मसीह तक पहुंचा। हर एक पितर में से होता हुआ वह मसीह तक पहुंचा। कोई बात नहीं कि उन्होंने क्या किया, क्या कहा। वे लोग पूर्ण रूप से धार्मिकता के बीज या वंश थे। और जब धार्मिक जन इब्राहिम आया, ओह महिमा हो, मुझे अब वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। धार्मिक इब्राहिम मिल्किसदेक से मिला, जो कि स्वयं परमेश्वर था। मिल्किसदेक कौन था? सेलेम का राजा, जो यरूशलम का राजा और शांति का राजा है। ना उसकी कोई माता थी, ना पिता, ना उसके दिनों का आदि है ना अंत, ना उसका जीवन कभी खत्म होगा। वह जो भी था आज भी जीवित है। वह कभी पैदा नहीं हुआ और ना ही कभी मरेगा। उसका कभी कोई माता पिता नहीं रहा, ना ही उसके दिनों का आदि है और ना अंत। मुझे बताइए वो कौन था? वह अनंत परमेश्वर था। ओह मैं भूल गया, आप उसे क्या कहते हैं अब? वो थियोफनी देह थी। वो ये मिथ्या लोक कथा नहीं है, वरन आज भी ये प्रकट कर दी गई है। ठीक वैसे ही जैसे वो तम्बू में इब्राहिम के पास एक स्वर्गदूत सा दिखाई देने वाले के रूप में गया था, और सारा उसकी भविष्यवाणी पर हंस पड़ी थी जो पीछे तम्बू में थी, इत्यादि इत्यादि बहुत सी बातें हुई थी। वैसा ही आज के समय में भी हुआ है। और वहाँ इब्राहिम की भेंट मिल्किसदेक से हुई, और परदादा इब्राहिम ने, जो कि धार्मिकता का वंश था, मिल्किसदेक को दशमांश दिया, और वह उसके पोते के लिए भी गिना गया जो धार्मिकता का वंश था। अब यहाँ सर्प वंश आता है। अब याद रखिए कि उन दोनों वंश के बीच में शत्रुता और लड़ाई रहेगी। सर्प का वंश आगे आया और उसने क्या उत्पन्न किया? आइए शुरू के कुछ सालों में देखें कि क्या हुआ। अब देखिए कि क्या होता है। हम इसे पढ़कर देखेंगे, क्योंकि अभी मैंने इसे देखा था कि क्या यूं ही लिखा है? सर्प के बीज से कैन पैदा हुआ, कैन नौत के देश में जाकर बस गया और वहाँ दानव उत्पन्न हुए, और उसके बाद वो नूह के देश में आया। वे लोग चतुर, शिक्षित और बुद्धिमान थे, क्या ये बात सच है? वे भवन निर्माता, वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता थे। वे धार्मिकता के वंश से नहीं वरन सर्प वंश से थे। वे लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक, भवन बनाने वाले महान लोग और शिक्षा शास्त्री बने। पवित्र शास्त्र ऐसा ही कहता है। उन्होंने पीतल, लोहा और अन्य धातुओं के हथियार बनाए। उन्होंने बहुत सी चीजों की खोज करी। उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार की धातुओं को मिलाकर विभिन्न चीजें बनाई, मकान आदि बनाए। पवित्र शास्त्र यही बताता है। वे स्त्री के वंश का मखौल उड़ाने वाले लोग थे। उन्होंने नूह जैसे धार्मिक व्यक्ति का मजाक उड़ाया, क्या ये ठीक बात है? आइए इन्हें थोड़ा और आगे तक देखें। तब हम उन्हें नौका तक पाते हैं, यानी कश्ती तक, जबकि जल पड़ने से सब कुछ नाश हो गया था। वे लोग चतुर, बुद्धिमान और शासक बन बैठे थे और पूरी तरह से पापों में लिप्त थे। अंत में परमेश्वर ने स्वर्ग से धरती पर देखा कि वहाँ दो चार को छोड़कर सभी पापी थे। अतः परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को नौका में ले लिया और आकाश से जल बरसाकर सभी कुछ नाश कर दिया। उससे पहले हनोक को जीवित ऊपर उठा लिया, क्या ये ठीक बात है? वहाँ शैतान का लगभग सारा वंश नाश हो गया था, मगर परमेश्वर के उद्देश्य को तो पूरा होना ही था। अब देखें कि नूह और उसके पुत्र जो नौका में वहाँ पर बचे थे, वे हाम, शेम, यापेत थे, जो धार्मिकता वाली पंक्ति में बाहर आए थे। किस प्रकार से सर्प वंश वहाँ तक पहुँचा? सर्प वंश इसी प्रकार से नौका में पहुँच गया जिस प्रकार से वह स्त्री के द्वारा शुरू में पहुँचा था, उनकी पत्नियों के द्वारा पहुँचा। उन्होंने शैतान के बीज को नौका में से उसी तरह से पार पहुंचाया जिस प्रकार हव्वा ने शैतान का बीज धारण करके कैन को जन्म दिया था। यह स्त्री के द्वारा किया गया। आप उन स्त्रियों को प्रचारक बनाकर मंच पर लाते हैं। पवित्र शास्त्र इसकी निंदा करता है। पौलुस कहता है कि अगर कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे, तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं, परंतु यदि कोई न जाने तो न जाने। यही कारण था कि मैं वहाँ उस बैप्टिस्ट चर्च से बाहर आ गया था। भाई फ्लीमन जो कुछ क्षण पहले यहाँ थे, मैं सोचता हूँ उस रात वे वहाँ थे। डॉक्टर डेविस ने कहा था, तुम यहाँ खड़े होकर इन महिलाओं को प्रचारक के रूप में मखसूस करोगे। मैंने कहा था, मैं ऐसा नहीं करूँगा, यकीनन नहीं। उन्होंने कहा, मैं आपको बाहर खदेड़ दूंगा। मैंने कहा, मेरी बेहतरी के लिए ही मुझे बाहर किया गया है। मैंने कहा, ये परमेश्वर का वचन है और ये इसको दोषी ठहराता है। मैं उसका पक्ष नहीं ले सकता जिसे परमेश्वर दूषित या दंडनीय ठहराता है। नहीं श्रीमान, जो कोई ऐसा करता है वह यही प्रकट करता है कि वे झूठे नबी और झूठे शिक्षक हैं। पवित्र शास्त्र बताता है कि ऐसे लोग होंगे, हो सके तो चुने हुओं को भी भरवा दें। यही बात है। अब इस पर ध्यान दें। वहाँ नौका में बचकर हाम और उसकी पत्नी भी आ गए। उसके ऊपर एक शाप था। हाम से निमरोध पैदा हुआ जिसने बाबुल को बनाया। बाबुल में से कैथोलिक चर्च निकल कर आया। इस तरह इसका प्रारंभ हुआ। ये आहाब के द्वारा नीचे तक चला आया। आहाब से होता हुआ ये यहूदा इस्करियोती तक पहुंचा और अंतिम चरण में मसीह विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट बना। और इन अंतिम दिनों में यहाँ मसीह का पवित्र आत्मा और मसीह विरोधी की आत्मा काम कर रही है। मसीह विरोधी की आत्मा कहती है कि आश्चर्य कर्म होने के दिन बीत गए। मसीह का आत्मा कहता है कि वो कल, आज और युगान युग एक सा है। मसीह विरोधी की आत्मा कहती है कि इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता अगर आपका बपतिस्मा छींटों के द्वारा, जल उड़ेल कर या किसी भी तरह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की उपाधियों में दिया गया। बात वही है। पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर अचूक है और कभी नहीं बदलता। आप किसकी सेवा करना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अब आप पूछेंगे, क्या वे दोनों संग रह सकते हैं? भाई ब्रैनम, आपने कहा था कि वहाँ दोनों नौका में साथ थे। नौका में शेत और हाम दोनों एक साथ थे। ये ठीक है, एकदम ठीक। हाम दुष्ट था, शेत धार्मिक और सत्यनिष्ठ, धार्मिकता से भरा था। ये ठीक है। अब हम हाम को देखें। ठीक है, एक ही नौका में हाम और शेत दोनों हैं, एक धार्मिक और दूसरा अधार्मिक है। उसी नौका में एक कौवा और एक पाखता संग थे। एक ही कलीसिया में यहूदा इस्करियोती और यीशु एक साथ थे। एक ही कलीसिया में मसीह विरोधी आत्मा और पवित्र आत्मा संग थे, और आज भी दोनों आत्माएं काम कर रही हैं। लिखा है कि वे भक्ति का वेश तो भरेंगे, बहुत धार्मिक होंगे, भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना पहचानेंगे। ऐसों से परे रहना। पवित्र आत्मा दावा कर रहा है कि यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। आप किसे चुनेंगे? मसीह विरोधी आत्मा कहती है कि ये पवित्र शास्त्र बस मतों और सिद्धांतों की एक किताब है। हम रसूलों का अकीदा पढ़ा करेंगे। मैं किसी भी प्रचारक को चुनौती देता हूं कि वो मुझे दिखाए कि पवित्र शास्त्र में रसूलों का अकीदा कहां दिया गया है। मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर जिसने आसमान और जमीन को बनाया, और उसके बेटे यीशु मसीह पर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र रोमन कैथोलिक चर्च पर और संतों के सहभागिता पर, संतों की सहभागिता पर? ये सब पवित्र शास्त्र में आप कहाँ पाते हैं? फिर भी आप इसे अपने बड़े मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट गिरजों में दोहराते हैं। ये शैतान का सिद्धांत है और झूठे नबी इसको सिखा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ, वरन मैं इस आराधनालय के लोगों को ये तथ्य ठीक से समझा रहा हूँ। आप जो इस ब्रैनम टैबरनेकल में हैं, इन सारी बातों से अलग रहें। जो कोई मृत संतों की सहभागिता पर विश्वास करता है वह प्रेतवाद का समर्थक है। मनुष्य और परमेश्वर के मध्य बस एक बिचवई है और वो है एक मनुष्य, यीशु मसीह। परवाह मत कीजिए कि वहाँ कितनी मरियम है। देखा आपने कि वहाँ पहले स्त्री के वंश ने किस प्रकार किया? देखा कि स्त्री का वंश किस तरह से वहाँ तक पहुँचा? आज अमेरिका में देखिए, अमेरिका शैतान के वंश से भरा है। ये क्या है? ये एक स्त्री का देश है। आपने सुना है कि ये एक स्त्री की दुनिया है। ये ठीक बात है, ये एक स्त्री का देश है। उन्होंने ऐसा ही नमूना स्थिर कर दिया है। अधिक समय नहीं हुआ जब मैं स्विट्जरलैंड गया था, एक पवित्र आत्मा से भरी महिला ने कहा, आप जानिए कि यदि मैं अमेरिका में जाऊं तो लोग वहां यही कहते हैं कि स्त्री को स्वतंत्रता मिल गई है। मैंने कहा, मैं आपको बताता हूं कि ये हालत उन्हें कहां ले जा रही है, और मैंने उन्हें बताना शुरू किया। उसने कहा, ओह प्रभु दया कर, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा, यही बात है, ये सब अंत में उसी स्थिति में पहुँचेंगे। क्या आप जानते हैं कि वैसा लोग वहाँ नहीं करते जैसा यहाँ करते हैं? ये क्या है? मैं आपको दिखाता हूँ कि अमेरिका एक स्त्री है। हमारे सिक्के पर एक स्त्री का चित्र है। यहाँ सभी कुछ स्त्रीलिंग है। मुझे बताइए, यहाँ पूरे देश में अधिक शराबखाने नहीं है। आप इस शहर में 40 मदिरालय बना दें और केवल 3 ऐसी वेश्याएं छोड़ दें जो देखने में सुंदर हों और सड़कों पर कमर मटकाकर चलती हों, और वे वेश्याएं अपने पीछे वासनामयी लालसा रखने वाली इतनी अधिक आत्माओं को नरक में भेज देंगी जितना शहर के सारे मदिरालय भी नहीं भेज पाएंगे। ये एकदम ठीक बात है। पतन का कारण कौन है? स्त्री है। क्या है? वे अमेरिका की देवी है, ईश्वर है। इन कुछ पुराने चलचित्र अभिनेता या अभिनेत्रियों को लीजिए, वे 4-5 बार विवाह कर चुके हैं और 3-4 विभिन्न पतियों के संग एक ही समय में वे रह रही हैं। और कुछ पत्रिकाएं उनके नग्न चित्र छापकर उनका पर्दाफाश करती हैं, और आप नव किशोरी छोटी लड़कियां उन्हें अपना नमूना बना लेती हैं, आदर्श मानती हैं। क्यों? क्योंकि शायद आपसे पूर्व आपकी माँ या आपकी दादी वैसी रही है। आपने देखा कि सर्प का बीज कहाँ से काम करता है? यकीनन ऐसा ही है। और इससे क्या हुआ है? अगर व्यवस्था के अनुसार अधर्म का पाप 14 पीढ़ियों तक बना रहता है, तो आज के दिनों में वह कितने अधिक समय तक बना रहेगा, जबकि धार्मिकता का वंश अलग किया जाने वाला है। और परमेश्वर ने कहा था कि अगर उस समय को घटाया नहीं जाता तो कोई भी नहीं बच पाता। हम अंत समय में हैं। आज रात धार्मिक वंश को खोजिए, शहरों में निकल जाइए। ओह, आप गिरजों के सदस्यों को देखते हैं जो कि जितना भी कोई हो सकता है उतने ही वफादार बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन लोग हैं, मगर जिस तरह एक खरगोश को बर्फ में पहनने वाले जूतों से कोई सरोकार नहीं होता, वैसे ही इन्हें भी परमेश्वर से कुछ सरोकार नहीं रहा है। वे उसके बारे में कुछ नहीं जानते। वे बस इतना जानते हैं कि जब उनसे पूछा जाए कि आप मसीही हैं, वे कहते हैं मैं कैथोलिक हूँ। क्या आप मसीही हैं? मैं बैप्टिस्ट हूँ। क्या आप मसीही हैं? मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ। क्या आप मसीही हैं? मैं पेंटिकोस्टल हूँ। इससे जरा भी कुछ मतलब नहीं है। आप मसीह हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आपको बचा लिया है और आप इस बारे में जानते हैं, और किसी चीज ने आपका जीवन बदल दिया है और आप अभिन्न तरीके से जीवन जीने लगे हैं और आप मसीह यीशु में नई सृष्टि बन जाते हैं, यकीनन। मगर आप देखिए कि सर्प का बीज कहाँ है? सर्प का बीज कहाँ था? व्यभिचार था। क्या आप समझ रहे हैं? हव्वा के साथ किया व्यभिचार। उसका क्या हुआ? किसके द्वारा वो बीज आगे पनपता गया? आज रात वो बीज क्या है? कुछ साल पहले ध्यान कीजिए, जब वो पहला गीत आया था। पुराने लोगों, आप जानते हैं कि रेडियो आदि पर प्रसारित करने से पहले गीतों को सेंसर किया जाता था, और पहला गीत जो इस प्रकार का आया वह था, नाचो लड़कियों नाचो और अपने सुंदर घुटने दिखाओ, पापा और माँ पर हा 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 करके हंसो। ये पहला गीत था जो उन्होंने रेडियो पर यूं ही आने दिया था। आप क्या सोचते हैं, जिस व्यक्ति ने ये गीत लिखा होगा वो आज कहाँ है? वह मर चुका है। आप क्लारा बो के बारे में क्या सोचते हैं, जिसने सबसे पहले अर्धनग्न वस्त्र पहनकर भयंकर घुमाओ शीर्षक का गीत गाकर हजारों आत्माओं को नरक में झोंक दिया था? आप क्या सोचते हैं कि आज रात वो कहाँ है? वह बहुत समय पहले मर चुकी है। अपनी उस देह सहित वो कहाँ है? नैतिक रूप से नाश हुई, वह धूल में दबी पड़ी है और कीड़े मकोड़ों ने उसकी देह को खा लिया है, और उसकी आत्मा न्याय करने वाले परमेश्वर के सामने खड़ी है। वह मनुष्य कहाँ है जिसने महिलाओं के लिए वे गंदे अश्लील वस्त्र बनाए, जिसे स्त्रियों ने पहना और वे पथ से इधर उधर भटक गईं और अनुपयुक्त बन गईं? वे ऐसा किस लिए करती हैं? आप उस तरह की चीजें क्यों पहनती हैं? क्योंकि आप चाहती हैं कि पुरुष आपकी ओर देखें, और यह किसी और तरीके से हो नहीं सकता। और क्या आप जानते हैं कि जब आप वैसा करती हैं और कोई पुराना पापी आपकी ओर देखता है, तो क्या आपको पता है कि क्या होता है? न्याय आसन के सामने क्या होगा? अभी आप कहती हैं, भाई ब्रणम, मैं जितना हो सकती हूँ अपने पति के प्रति उतनी ही सच्ची हूँ, मगर आप व्यभिचार करने की दोषी गिनी जाएंगी। यीशु ने कहा था कि जो कोई किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि डाले वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका। जब उस मनुष्य को अपने इस व्यभिचार करने का जवाब देना होगा तब उसका क्या होगा जिसके द्वारा ये किया गया। ये उसी वजह से हुआ जिस तरह से आपने वस्त्र पहने और खुद को पेश किया। अब मेरा ये अभिप्राय नहीं है कि आपको किसी पुराने ऐतिहासिक संदूक में से वैसे वस्त्र निकाल कर पहनने हैं, मगर ऐसे कपड़े पहनने चाहिए कि आप सुशील स्त्री ज्यादा दिखाई दें। आप छोटे छोटे वस्त्र पहने, एक छोटी सी पट्टी से चारों ओर लपेटे और अपने बच्चे को साथ लिए जिसकी आंखें मानो सिगरेट झाड़ने की ट्रे हो और अपने मुंह में आप सिगरेट दबाए आप सड़कों पर घूमती हैं। आप ऐसा किसी भले उद्देश्य से नहीं कर रही हैं। हो सकता है आप हकीकत से बेखबर हो, मगर शैतान आपको उसी प्रकार अपने अस्त्र के रूप में प्रयोग कर रहा है जैसे उसने हव्वा को प्रयोग किया था। यह एक स्त्री का देश क्यों है? क्योंकि यह ठीक कैथोलिक वाद के अधिकार में चलता चला जा रहा है। आज क्या हो रहा है? आप उनको यीशु का नाम लेते कभी नहीं सुन सकते। बस यही सुनाई देता है, हेल मेरी, मरियम का स्वागत है, अभिनंदन है, मरियम जो परमेश्वर की माता है, संत सिसिलिया और सारे मरे हुए संतों के अभिवादन का शोर सुनाई देता रहता है। अधिक समय नहीं हुआ, पिछले साल मैं मेक्सिको में था, वहाँ एक गरीब महिला घिसटती हुई आई जिसके घुटने तक इस तरह से छिल गए थे कि वह अपने हाथ उठाकर चीख पुकार रही थी, और उसका पिता उसके दो बच्चों को साथ लिए चल रहा था जो कि अपनी माँ का कष्ट देखकर रो रहे थे। ये सब यूं था कि वे जिस किसी महिला को संत कहते थे वह मर चुकी थी, उसके किसी प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी थी और उसकी प्रतिमा ऊपर पहाड़ी पर स्थापित कर दी गई थी। क्योंकि वो कैथोलिक थी अतः इस प्रकार शहीद होते ही उसे संत स्वीकार कर लिया गया था। अब यह महिला उस प्रतिमा के पास घिसटती हुई पश्चाताप करती हुई चली जा रही थी। उसे अपने पापों के पश्चाताप करने के लिए इसी तरह पत्थरों पर घिसटते हुए 2 मील तक जाना था। मेरे भाई, यदि अब भी कुछ करने को मेरे लिए बाकी है तो यीशु मसीह बेकार में मेरे लिए मारा गया। मैं अपने किसी कार्य से नहीं, वरन उसके अनुग्रह और परमेश्वर की इच्छा और उसकी भली मंशा से बचाया गया हूँ। वहाँ पर उन संवाददाताओं ने मुझसे पूछा, भाई ब्रहम, वहाँ पर वो छोटा बच्चा फिर से जलाया गया था और अन्य आश्चर्य कर्म हुए थे। वहाँ 20,000 कैथोलिक लोग बचाए गए, 30,000 तो अफ्रीका में थे। वहाँ मेक्सिको शहर में जब वो बच्चा जिंदा किया गया तो एक ही समय 20,000 कैथोलिक लोगों ने मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और वहाँ खड़े कैथोलिक पादरी कुछ नहीं कह सके। बहुतों ने उपद्रव करना शुरू कर दिया था, बहुत से लोग हमारे पक्ष में भी थे। उसने पूछा, श्रीमान ब्रहम, क्या आप मानते हैं कि हमारे संत भी वैसा कर सकते हैं जैसा आप करते हैं? मैं उनके सिद्धांत को जानता था, इसलिए मैंने कहा, यकीनन, यदि वे जीवित हों। आप समझ गए? आप समझे, जब तक कोई मरना जाए तब तक कोई कैथोलिक संत नहीं बनता। उसने कहा, ओ, जब तक आप मरना जाए तब तक संत नहीं बन सकते। मैंने पूछा, आपने ये कहाँ से पढ़ लिया? पौलुस कहता है, उन संतों के नाम जो इफिसुस में हैं और जो परमेश्वर के जन कहलाते हैं। पौलुस अपना पत्र पढ़ते समय कहता है, उन संतों के नाम जो इफिसुस में हैं, और संत अन्य स्थानों में भी थे, संत जो गलतियां में थे, संत जो रोम में थे, और वगैरह वगैरह। संत का अर्थ है पवित्रीकरण किए हुए लोग। इस बारे में क्या कहना है? उन्होंने कहा, वास्तव में हमें पवित्र शास्त्र पर तर्क नहीं करना है, क्योंकि हमारा गिरजा है और गिरजा जो कहता है हम उसे मानते हैं। हम इस बात की परवाह नहीं करते कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है, हम ये देखते हैं कि हमारा गिरजा क्या कहता है। उन्होंने मुझसे पूछा कि कैथोलिक गिरजे के बारे में तब आपका क्या विचार है, क्या धारणा है? मैंने कहा, काश आपने मुझसे ये सवाल न पूछा होता, और चूंकि आपने ये सवाल पूछा है अतः मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे सच्चाई बताएं। मैंने कहा, कैथोलिक चर्च प्रेतवाद का सबसे ऊंचा नमूना है मेरी जानकारी। उन्होंने पूछा, आपने ये निष्कर्ष कैसे निकाला? मैंने कहा, जो कोई मृत लोगों से संपर्क करता है या उन्हें बिचवई मानता है वह प्रेतवादी कहलाता है। मैंने कहा, अगर वो मृत संत फिर से बोल सकता है तब यकीनन वह अधोलोक में है, क्योंकि मेरा पवित्र शास्त्र बताता है कि जो मृत्यु से पार उस जीवन में चला गया वह लौट कर वापस नहीं आ सकता। ये ठीक बात है। मैंने कहा, अगर वो वास्तव में संत है तो फिर शैतान संत बनकर आपसे बातें कर रहा है। जो भी हो, आपकी बात संत से नहीं हो रही है। और उन्होंने कहा, अब एक मिनट ठहरिए, आप भी तो मृतक से संपर्क साधते हैं। मैंने पूछा, कैसे, कब? उन्होंने कहा, यीशु मसीह भी तो मरा था। मैंने कहा, मगर वो फिर से जी उठा था। वह मृत नहीं है, वह जीवता है, और परमेश्वर और मनुष्य के मध्य में केवल वही एक बिचवई है। वो कहता है, मैं जो मर गया था अब युगानुयुग जीवता हूँ। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत में ले। ओह, ये मेरा परमेश्वर है, ऐसा मेरा परमेश्वर है। धार्मिकता का बीज या वंश अब लगभग बाहर आ चुका है। इन बातों के बारे में लोगों को बताएं कि वे फिर से वापस पवित्र शास्त्र में दिए पथ पर लौटें। लोगों को आश्चर्य कर्मों के बारे में बताएं। लोगों से इस बारे में बातचीत करें। उनके गिरजे इस बात पर विश्वास नहीं करते, अतः वे व्यभिचार की संतान हैं। पवित्र शास्त्र बताता है कि अगर हमारे ऊपर कष्ट नहीं आते, हमें उसके नाम में सताया नहीं जाता, हमारा उपहास उड़ाया नहीं जाता, यदि हमें पवित्र, पाखंडी आदि कहकर पुकारा नहीं जाता, अगर ऐसी हालतों में आप स्थिर बने नहीं रह पाते, तो फिर आप व्यभिचार की संतान हैं, परमेश्वर की संतान नहीं हैं। पवित्र शास्त्र में ऐसा ही कहा गया है, मुझे पवित्र, पाखंडी कहिए या जो भी चाहे आप कहिए, जहाँ तक मेरा हृदय परमेश्वर के संग ठीक है और मेरे अनुभव पवित्र शास्त्र में लिखे वचन के अनुरूप है, तो मैं ठीक उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। जी हाँ श्रीमान, हम ऐसा ही विश्वास करते हैं। यह जीवते परमेश्वर का चर्च है, गिरजा है, जो धार्मिक स्कूली शिक्षा से नहीं बनता। यह किसी मनुष्य के द्वारा बनाए गए बौद्धिक विचारों पर आधारित नहीं है। यह पूर्ण रूप और सिद्ध रूप में इस सत्य प्रकाशन पर आधारित है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अगर मैं किसी बात के बारे में एक बौद्धिक विचारधारा केवल इसलिए बना लूं कि मेरे बैप्टिस्ट या मेथोडिस्ट गिरजे में वैसा ही सिखाया गया है, जबकि मैं पवित्र शास्त्र में उस बारे में कुछ और पाऊं, अगर मेरा बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हुआ हो और मैं इस पवित्र शास्त्र में पढ़ूं और कोई प्रचारक मुझे ये बताए कि पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के नाम के अलावा और किसी तरह से कभी बपतिस्मा नहीं दिया गया, और मैं ये बात, ये सच्चाई पढ़ और देख लूं, तो फिर मैं जितनी तेजी से पानी में कूद सकता हूं कूद पड़ूंगा। जी हाँ श्रीमान, अगर कोई मुझसे कहता है कि यीशु मसीह महान चंगाई देने वाला था और मेरा गिरजा मुझसे कहता है कि आश्चर्य कर्म करने के दिन बीत गए और मुझे चंगाई की जरूरत है, तो मैं जितना तेज दौड़ सकता हूं उतना तेज दौड़कर वेदी तक जाऊंगा ताकि चंगाई पाऊं। यकीनन मैं ऐसा ही करूंगा। यदि मैं प्रचारक हूं और मैं अपने आराधनालय के मंच पर किसी महिला प्रचारक को देखूं और मैं पवित्र शास्त्र में देख लूं कि महिला को या स्त्री को वचन प्रचार नहीं करना है, तो वह मेरे संरक्षण में वहां है, तो मैं उसे वहां से हटा दूंगा। याद है एक रात वहां पर एक महिला बैठी थी जहां इस समय बहन राइट बैठी हैं, और मेरे ऐसा ही कुछ कहने पर वह महिला मुझे द्वार से बाहर फेंकने को तैयार थी। हाँ श्रीमान, मैंने कहा था कि आप मेरे गिरजे में इस तरह के भद्दे वस्त्रों में मत आना। वे लोग वस्त्र को ऊपर से नीचे तक इस प्रकार से काटते थे कि लगभग आधा शरीर नंगा हो जाता था। मैंने कहा था कि ऐसे वस्त्र पहनकर कभी कोई मेरे गिरजे में आएगा तो मैं निश्चित रूप से उसे बाहर निकाल दूंगा। एक और सन की स्त्री थी जो उस घटना के बाद अधिक समय जीवित नहीं रही थी और मृत्यु के समय उसने मुझे बुलवाया था। वह कैथलिक की लड़की थी। मैं वहाँ आई और इसी तरह के वस्त्र पहने थी और वो आकर बैठ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैं उस पर नजर रखे हुए था। वे लोग गाना गाने लगे थे। मैंने अपना कोट उतारा और उसके पास जाकर उसके कंधों पर उड़ा दिया और कहा, मैंने कहा, मैडम अगर आप मुझे वचन प्रचार करते सुनने आए तो कृपया इस कोट को पहनकर परमेश्वर के भवन में आना। समझे आप, ऐसा ही होना चाहिए। वे वहाँ से अपने होंठ बिचकाते हुए उठी और भवन से बाहर चली गई। उसने कहा, इस व्यक्ति के पास यदि कोई धर्म है तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी गाय तक भी उस धर्म को ग्रहण करे। मैंने कहा, आप चिंता न करें, गाय वैसा नहीं करेगी। उसके बाद हमने प्रार्थना सभा का तंबू आदि खड़ा कर लिया था। तब जबकि वो मरने वाली थी, तब उन्होंने मुझे बुलवा भेजा था। उसको दिल का दौरा पड़ा था और वो मर रही थी। उसके पति ने आकर कहा, शीघ्र चलिए। मैं उस समय ठीक सभा में था। वह लंबा चौड़ा लड़का द्वार पर खड़ा मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं दौड़कर अपनी कार में बैठा और तेजी से चल दिया। जब मैं ऊपर अस्पताल में पहुंचा तो मुझे वो बूढ़ी नर्स मिली जो अभी तक हार्वर्ड पार्क में रहती है। उन्होंने बताया, पादरी साहब अब आने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात 20 वर्ष या हो सकता है इससे भी कुछ अधिक पुराने समय की है। उन्होंने कहा, वो मर चुकी है और उसे मरे लगभग 3 मिनट हो चुके हैं। वह जितने जोर से पुकार सकती थी उतने जोर से उसने आपको पुकारा था। उन्होंने कहा, आपके लिए एक संदेश है। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, जिनके बारे में मैंने बताया है उन प्रचारक महोदय से कह देना कृपया करके मुझे क्षमा कर दें। मैं उसे देखने नीचे चला गया। वह सुंदर महिला थी। वह सलोने चेहरे वाली सुंदर स्त्री थी और मृत्यु से पूर्व उसे इतना अधिक कष्ट हुआ था कि उसकी नाक के चारों ओर दाने से उभर आए थे। अत्यधिक तनाव के कारण वहाँ चकत्ते से बन गए थे और उसकी आंखें खांचे से पूरी तरह बाहर को आ गई थीं और आधी पलट गई थीं। निश्चित रूप से उसके गुर्दे व अंतड़ियां खिंच गए थे और देह के अंदर की तनावपूर्ण हालत से भरी गंदगी उसके बिस्तर पर इस तरह से फैली थी। उसके पति ने मेरी ओर देखा और कहा, भाई ब्रणम, आप प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि वह आपसे मिलना चाह रही थी। मैंने कहा, उसके लिए प्रार्थना करने से कुछ लाभ नहीं होगा। एक वृक्ष जिस ओर झुकता है उसी ओर गिर जाता है। आप समझे, धोखे में मत रहना। परमेश्वर ठटकों में नहीं उड़ाया जाता। एक मनुष्य जो कुछ बोता है वही वह काटेगा। क्या आप देख रहे हैं कि ये सब कहां से आया, कहां जा रहा है? देखिए कि हुआ क्या है। एक महिला को देखिए जो वैसी होने जा रही है। एक उस महिला को देखिए जो पहले रहती थी और गायिका थी। उसकी बेटी क्या बनी, क्या बनी? एक थिरकती फड़कती लड़की। उस फड़फड़ाती लड़की की बेटी क्या बनी? रॉक एंड रोल करने वाली एक किशोरी बनी। और उसकी बेटी क्या होगी? ये सब क्या है? धार्मिकता के बीज को देखिए। बैप्टिस्ट लोगों, आप खुद को देखो। थोड़ी पीछे जाकर अपने को देखो, जब आपके संस्थापक जॉन स्मिथ थे। जब उसने लोगों के अधर्म के लिए जार जार रोकर तब तक प्रार्थना करी थी जब तक कि उसकी आंखें सूजकर बंद ना हो गई थीं, और सुबह नाश्ते पर उनकी पत्नी को अपने हाथ से उन्हें नाश्ता कराना पड़ा था। और आप मेथोडिस्ट लोगों, देखो आप अपनी नाक और कान में जेवर और आभूषण पहनते हो, छोटे छोटे वस्त्र पहनकर सड़कों पर शैतान के आसन बने घूमते हो। याद करो जब मेथोडिस्ट चर्च के उस बुजुर्ग जॉन स्मिथ ने 85 साल की आयु में मृत्यु से पूर्व एक छोटा सा बस 4 घंटे का वचन प्रचार किया था। वे इतने बुजुर्ग थे कि उन्हें उठाकर मंच पर बिठाया गया था और उनके अंतिम शब्द यही थे। उन्होंने कहा था, मुझे कितना अधिक दुख पहुंचा है ये देखकर यहाँ तक कि मेथोडिस्ट चर्च की बेटियाँ भी अंगुलियों में सोने के छल्ले पहने हैं। वही जॉन स्मिथ अगर आज देखें तो क्या कहेंगे जब आप अधनंगे वस्त्र पहनकर भजन मंडली में भजन गा रही हैं? आपने बहुत अच्छी शुरुआत करी थी, मगर फिर क्या हुआ? आप अपनी माँ की तरह से व्यवहार कर रही हैं। यह एकदम ठीक बात है। यही कारण है कि हम ऐसा कोई भी नामधारी गिरजा नहीं चाहते जिसमें ऐसी पर्ची चिपक जाए कि हम मेथोडिस्ट हैं, हम बैप्टिस्ट हैं, हम बस मसीह के हैं। इसे बस ऐसे ही रहने दें और स्वतंत्र बने रहें। अब आप सर्प का बीज या वंश देखिए। एक पतित महिला अब कैसे परिणाम को चाहेगी? इससे क्या होने जा रहा है? क्या हुआ है? निरंतर पतन होता चला गया है। उन्होंने बैप्टिस्ट को पीछे घसीटा, मेथोडिस्ट और प्रेसबिटेरियन को पीछे घसीटा। उन्होंने क्या किया है? वे सभी अपनी माँ उस बूढ़ी वैश्या के समान फिर से उसी की तरह बन गए हैं। वे सभी अब वैसा ही व्यभिचार कर रहे हैं। कहते हैं कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या उनको जल में डुबाकर बपतिस्मा दिया गया या छींटों का। उन लोगों ने पापों को स्वीकार कर लिया है। उन लोगों ने 6 माह की प्रतिबंधित अवधि पूरी कर ली है जिसमें उन्होंने अधिक शराब नहीं पी है, वगैरह वगैरह। वे लोग चर्च के अच्छे सदस्य हैं, अच्छा चंदा देते हैं। ओह प्रभु, इन बातों को जो लोग कहते हैं आत्मा के फलों से कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा का फल तो विश्वास है, ये विश्वास कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। भाइयों से प्रेम रखना चाहिए, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, नम्रता, कृपा, मेल, विश्वास और संयम होना चाहिए। ये सब तो आत्मा के फल हैं। हम एक आदमी को लेकर ये कहते हैं कि वह एक अच्छा पड़ोसी है, अच्छा जीवन जी रहा है। एसाऊ भी ऐसा ही करता था। एसाऊ ने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई, पर एसाऊ शैतान से था। मगर याकूब जो उसी गर्भ से पैदा हुआ था वह परमेश्वर का जन था। शैतान का बीज और स्त्री का बीज, परमेश्वर का बीज स्त्री के द्वारा आया। अब आप देखिए कि ये सब नीचे आते हुए इतना अधिक पतित हो गया है कि सोचिए आज दुनिया में क्या बाकी बचा है। मैं इस बात को वास्तव में सख्त शब्दों में कहने जा रहा हूँ। उसके बाद अगली सभा में हम बेदारी की बात शुरू करेंगे। इसको एक आकार में आना है। कृपया ये न समझे कि मैं अनादर करने की भावना से ऐसा कह रहा हूँ। मैं ऐसा इस कारण नहीं कह रहा हूँ कि मैं नीच हूँ। इस स्थिति को एक ऐसे स्थान तक पहुँचना है यानी अवैध व्यभिचार की संतानें एक बड़े धार्मिक झुंड में जमा होंगी। इस बारे में मेरी अंतिम टिप्पणी यही है, अंत में ऐसा ही होना है। आप जानते हैं कि ये सच है। उन्हें नामधारी गिरजों के सदस्य बनकर गिरजों में रहकर एक बड़ा झुंड बनना है जो अवैध व्यभिचार की धार्मिक कही जाने वाली संतानों का झुंड होगा। और वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ठीक ठीक ऐसा ही है। उसके बाद क्या होना है? यहाँ रॉकेट तने खड़े हैं, अनेकों रॉकेट, कोबाल्ट बम और बहुत से विनाशकारी अस्त्र तैयार हैं, और वे बस उन शैतानी सत्ता के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यहाँ अब आग से सभी कुछ नाश किया जाएगा जैसे पहले जल से किया गया था। और मित्रों, आप चाहे जो भी करें, अगर आप मसीही हैं और आपके हृदय में परमेश्वर है और आप जानते हैं कि आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, तो फिर आपको दुनिया का सबसे खुश मनुष्य समझना चाहिए। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा, पवित्र शास्त्र कहता है यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। नामधारी गिरजे कहते हैं मगर हमारा विश्वास है कि आश्चर्य कर्म वाले दिन बीत चुके हैं। पवित्र आत्मा कहता है आमीन, यीशु मसीह कल भी वही था और सर्वदा एक सा रहेगा। ऐसा ही हो। पवित्र शास्त्र कहता है पश्चाताप करो और अपने पापों की क्षमा के लिए तुम में से प्रत्येक जन यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों, अन्य जातियों व उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिन्हें प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आप समझे, ये नहीं कि जितनों को मेथोडिस्ट बुलाएगा या बैप्टिस्ट बुलाएगा, वरन जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा और वे यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेंगे वे ही पवित्र आत्मा को पाएंगे। पवित्र शास्त्र ऐसा ही कहता है। जब ये बात आपको ठीक लगती है तो आप आमीन कहते हैं। नामधारी गिरजे कहते हैं ओह इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर आपके अंदर का पवित्र आत्मा अपने वचन पर आमीन कहता है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन उन बातों से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलती हैं। यही बात है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे पवित्र शास्त्र में से एक पंक्ति भी दिखा दें जो ये कहती हो कि ये सब जो अब हो रहा है वह सेब से शुरू हुआ था। मैं चाहता हूं कि आप मुझे दिखाएं कि उन्होंने सेब खाए थे। मैंने आपको दिखा दिया है कि केन ने भी यही सोचा था कि मामला सेब का है और उसका वंश भी आज वैसे ही सोच रहा है, मगर पवित्र शास्त्र के द्वारा दिया गया आत्मिक प्रकाशन प्रमाणित करता है कि वहाँ सर्प व स्त्री में अवैध रूप से यौन संभोग हुआ था। वहीं से आपके वे दानव पैदा हुए थे, वहीं से पाप आया था, वहीं से सारा भ्रष्टाचार आया था, वहीं से आज ये यहाँ तक पहुँचा है। अब इस सारे मामले में ध्यान दें कि सर्प दुगना चतुर था, उसका वंश भी दुगना चतुर है। और मैं आज इस मंच पर चढ़कर और इस माइक को हाथों में थामकर और अपने पांव पूरी तरह यहाँ जमा कर कहना चाहता हूँ, आज आपके वे महान बुद्धिजीवी कहाँ हैं? आपका पादरी जिसने वहाँ जाकर ढेर सारा बौद्धिक ज्ञान प्राप्त किया है, और वह बड़े बड़े गिरजों का पादरी है जो कि इस देश में है, सारे पादरी ऐसे ही हैं। आज सर्प का वंश कहाँ है? वह इसी तरह के चतुर बुद्धिमान व्यक्तियों और उनके पदों में है, चतुर तीक्ष्ण तेज धार्मिक शिक्षार्थियों में है। यही वो जगह है जहाँ आज सर्प वंश है, वह ऐसे ही आदमियों में छिपा है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, यहोवा का आत्मा कहता है। समझे, यही तो आपको जानना है। तब आप एक भाई को सड़क के कोने में खड़े एक पुराना सा गिटार बजाकर भजन गाते देखते हैं, जो पुकार रहा है, भाई आओ और प्रभु को पाओ। पादरी वहाँ से गुजरता है और कहता है, मैं अपनी सभा को यहाँ नहीं आने दूंगा, मैं इस व्यक्ति से कुछ संबंध नहीं रखूंगा, मैं नहीं चाहूंगा कि लिडी व जानी मुझे इस प्रकार के स्थान में खड़ा देखें। शैतान के बच्चों जाओ, वैसे भी तुम अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हो, जब तुम्हें हमेशा के लिए नाश किया जाएगा। ये ठीक बात है। मैं यहाँ दूसरा शब्द इस्तेमाल करके यानी अवैध संतान शब्द का प्रयोग कर सकता था, और ये एकदम ठीक ही होता, ऐसा ही है। क्योंकि आप देखिए कि कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता ही उसे खींच ना ले, और जो कुछ मेरे पास आएगा उसमें से कुछ भी नाश ना होगा, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मुझे वो सब मिल गया है, मैंने रख लिया है, मेरे अलावा कोई और मनुष्य ऐसा कर नहीं सकता, सब कुछ उसी में है। आप नहीं कह सकते कि यह एक चीज मैंने करी है, यह तो परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने ये सब किया है। अतः मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे पास कभी कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं था जिससे मैं बच जाता। नहीं, आपके पास कुछ करने को नहीं था, एक चीज भी आपके हिस्से में नहीं जाती जो आपने करी हो, परमेश्वर ही ने सब कुछ किया है। इसके एक भाग के करने के लिए कभी आपकी एक अंगुली भी नहीं हिली है। आप नहीं कह सकते कि मैं एक अच्छे परिवार से आया हूँ, मैंने ये किया है, उससे इसका जरा भी संबंध नहीं है। एक परमेश्वर ही वो है जिसने हमें उद्धार दिया है, परमेश्वर की करुणा है। मुझे क्षमा करें, अभी पूरे 11 नहीं बजे हैं, मगर जो भी हो मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ, समझे। आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि पवित्र शास्त्र इन बातों को सत्य बताता है? खास तौर से ब्रहणम टैबरनेकल के लोगों से पूछ रहा हूँ। अब देखिए कि ये सब उसका जो हम सिखाते और जिस पर विश्वास करते हैं बस 1/16 भाग है, मगर आप लोग जो यहाँ हैं और इस आराधनालय के नहीं हैं, आपसे कह रहा हूँ, आप याद रखिएगा, हम इन बातों पर इस तरह से विश्वास करते हैं कि यह पवित्र शास्त्र है और पवित्र शास्त्र परमेश्वर की सच्चाई है। हम विश्वास करते हैं कि पुराने नियम में उनके पास ये जानने की एक विधि थी, एक तरीका था कि क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है। हम सब ये जानते हैं कि उनके पास लिखित व्यवस्था थी। कितने लोग ये बात जानते हैं? विधियाँ और नियम उस संदूक में थे और उन पर नियम आदि लिखे थे। ठीक है, लिखा था तू कभी व्यभिचार न करना, जो कोई भी कभी व्यभिचार करेगा वो पत्थरवा करके घात किया जाएगा। आप समझे, ये व्यवस्था थी, विधि थी और विधियों में नियम थे। अब देखें कि वाचा का संदूक इस प्रकार से था, नीचे व्यवस्था की विधियां थी और उनके नियम संदूक के सिरे की जेबों में धरे थे। अगर कोई मनुष्य व्यभिचार का दोषी पाया जाता था तो वे नियम देखते थे जो कहता था उसे पत्थरवा कर दो, वे उसे तभी ले जाकर पत्थरवा कर दिया करते थे। उन विधियों में ऐसा ही नियम था। उनके पास ये जानने के लिए दो और साधन थे, हमेशा 3 की संख्या से बात की पुष्टि होती है। उनके पास सच्चाई जानने का एक और तरीका था और वो था नबी के द्वारा, स्वप्न दृष्टा के द्वारा। कितने लोगों को ये बात पता है? अगर तुम्हारे बीच में कोई नबी आत्मिक जन होगा तो मैं तुम्हारा प्रभु उस पर स्वयं को स्वप्नों के द्वारा प्रकट करूंगा और दर्शनों के द्वारा बातें करूंगा। ये ठीक बात है। अब देखिए कि ऐसा मनुष्य भविष्यवाणी करता था। अगर कोई मनुष्य आकर कहता था कि ओ हालेलुया, मुझे वचन मिला है, मैं प्रभु के नाम में भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मुझे प्रकाशन मिला है, तो वे लोग उसकी बात वैसे ही नहीं मान लेते थे जैसे कि आप लोग आज करते हैं। पहले वो परमेश्वर से पूछकर उसके कथन की जांच करते थे। अब देखें कि हारून के सीने की तख्ती पर वह लटका रहता था जिसे वे उरीम तम्मीम कहते थे। कितने लोगों ने ये शब्द कभी सुना है? वो क्या था? उस पर 12 पितरों के नाम पर दोनों भागों में 6-6 मणियों वाले पत्थर यानी 12 पत्थर जड़े थे। तब वे इस नबी को उस उर्रीम तमीम के सामने खड़ा करते थे और उर्रीम तमीम को ऊपर उठाकर उसके सामने करते थे। तब वे उससे कहते थे कि अब अपनी भविष्यवाणी कह। वह कहता था कि परमेश्वर मुझसे बोला और ये बातें करी हैं। कोई बात नहीं है कि उसकी बातें कितनी वास्तविक लगे और ऐसी दिखाई दे कि मानो वो सच हों। मगर उसकी बात अगर ठीक है तो उरीम तम्मीम में से एक साथ चारों ओर से धनुष के रंग की ज्योति चमक उठती थी, यानी अलौकिक चिन्ह उसकी बात की पुष्टि करता था। देखा आपने, परमेश्वर हमेशा अपने वचन की पुष्टि करता है, और अगर वह अलौकिक प्रकाश उसमें से नहीं निकला तो मैं परवाह नहीं करता कि उसकी बात कितनी वास्तविक लगती है, वह गलत है। अगर कोई स्वप्न देखने वाला कहता कि मैंने स्वप्न देखा है कि इसराइल को अमुक अमुक स्थान पर चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ सीरियाई लोग आने वाले हैं जो उस स्थान पर अधिकार कर लेंगे, वे उस स्वप्न दृष्टा को वहाँ ले जाते थे और वह अपना स्वप्न बताता था। अगर उसमें वो प्रकाश नहीं चमकता था तो वह स्वप्न गलत था, चाहे वह कितना भी असली क्यों न लगे। अगर सीरियाई लोग युद्ध भूमि में भी खड़े हों तो भी वह गलत गिना जाता था। नहीं श्रीमान, बात की पुष्टि पूरी तरह से उरीम तम्मीम के द्वारा होनी जरूरी थी। अब सभी लोग जानते हैं कि पुराना याजक पद आदि चले गए और उन्हीं के साथ उरीम तम्मीम भी चला गया है। हम इस बात को जानते हैं या नहीं जानते? तब नया याजक पद आ गया, और क्या आज हमारे पास उरीम तम्मीम है? हाँ श्रीमान, परमेश्वर का वचन। जी हाँ, यही है। अगर कोई मनुष्य किसी भी तरह का प्रकाशन पाता है या कुछ भी कहता है या कोई मत सिद्धांत बताता है जो पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है या इसमें दिए संपूर्ण वचन से मेल नहीं खाता तो वह गलत है। मैं परवाह नहीं करता कि वह किस नामधारी गिरजे का है, कितना अच्छा है, कितना बुद्धिमानी भरा है, कितना शिक्षित है, वह गलत है। और अगर इन बातों के खिलाफ जो हमने यहाँ सीखी हैं, कोई मनुष्य आपसे कहे कि छींटे देकर बपतिस्मा देना ठीक है तो समझे कि वह झूठ कह रहा है। उसकी बात उरीम तम्मीम पर नहीं चमकती। जब वो कहता है कि जल का उड़ेलना बपतिस्मे के लिए ठीक है तो उसने झूठ कहा है। जब वो कहता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ठीक है तो उसने आपसे झूठ कहा है। अगर कोई कहता है कि आश्चर्य कर्म होने के दिन बीत गए तो वह आपसे झूठ कह रहा है। अगर वो कहता है कि स्त्री का वचन प्रचार करना ठीक है तो उसने झूठ कहा है। अगर वो ये कहता है कि आप अपने नामधारी गिरजे में बने रहें तो उसने आपसे झूठ कहा है। ऐसा कहना उरीम तम्मीम पर चमकेगा नहीं। और दर्जनों बहुत सी और बातें हैं जो उस पुरानी माँ वैश्या ने दी हैं और आज इन गिरजों में आ गई हैं। यही वजह है कि हम नामधारी गिरजों से अलग हैं। हम अपने उन नामधारी गिरजों वाले भाई बहनों से प्रेम करते हैं, मगर आप मुझसे आकर ये मत कहिए कि मैं मेथोडिस्ट हूँ इसलिए मसीही बन गया हूँ। आप इसलिए मसीही हैं कि आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा से जन्मे हैं। आपको मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट बनना जरूरी नहीं है, दोनों में से कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस परमेश्वर के आत्मा से जन्म लेना है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? इन तथ्यों और आधारों पर अगर कोई यहाँ चाहता है कि वह हमारी इस प्रार्थना सभा में सहभागिता और सहयोग करे, और यदि वो चाहता है कि यीशु मसीह के नाम में डुबकी का बपतिस्मा ले, तो जल कुंड यहाँ तैयार है। वे लोग कुछ ही मिनट के बाद बपतिस्मा देंगे। अगर कोई यहाँ ऐसा है, बहुत से हैं जो हमारी सभाओं में आते रहना चाहते हैं किसी भी अन्य रूप में, तो आते रहें। हम यहाँ उनकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं। ये ठीक बात है। अब देखें कि हमारे यहाँ सदस्यता वाला मामला नहीं है, आप बस आते रहिए। हम विश्वास करते हैं कि मसीह मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट प्रेस्बिटेरियन गिरजों में है। उन सभी गिरजों में उसके चुने जन हैं। वहाँ बस यही कमी है कि झूठी भविष्यवाणियाँ वह सब बुराइयाँ पैदा कर रही हैं। इन नामधारी गिरजों की शिक्षाएं पूर्ण रूप से पवित्र शास्त्र के विरुद्ध हैं। अब अगर कोई मुझे इतना सरल करके साफ साफ कोई बात बताए तो मैं समझता हूँ कि मुझ में पर्याप्त रूप में परमेश्वर का आत्मा है कि मैं उन बातों को पवित्र शास्त्र में खोज कर देखूं और जब पालूं तो भूल सुधार कर लूं। यदि मैं वहां जाकर पादरी साहब से हाथ मिलाऊं और सदस्यता रजिस्टर में नाम लिखवा लूं और फिर भी मेरे हृदय में घृणा और बुराई भरी रहे और जलन डहा और झगड़ा करने की आदत बनी रहे, और अगर फिर भी मैं इस बात पर अविश्वासी करता रहूं कि यीशु मसीह महान चंगाई देने वाला है इत्यादि इत्यादि, तो मैं तो तुरंत परमेश्वर के पास जाकर अपना मामला ठीक करूंगा। यकीनन मेरा विश्वास है कि मैं ऐसा ही करूंगा। इस बारे में मैं इस कदर ईमानदार रहूंगा और परमेश्वर से संबंध ठीक करूंगा। मैं यह सोचकर कि मैं बैप्टिस्ट हूं या मेथोडिस्ट हूं, वहीं टंगा नहीं रह सकता। मैं एकदम से जाकर अपने हृदय में मसीहत को पालूंगा। मैं ऐसा ही करूंगा। जी हां श्रीमान। अब याद रखिए कि अगर प्रभु की इच्छा रही तो आगामी बुधवार रात से बेदारी सभाएं होंगी जो इन्हीं तथ्यों पर आधारित रहेंगी। दोस्तों सुनिए, एक सच्चा और जीवता परमेश्वर है, यह ठीक बात है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। पवित्र आत्मा आज कलीसिया में है। अब देखें कि अगर कोई और मुझसे ये बात कहता तो मुझे संदेह करने का अधिकार होता, मगर सुनिए, एक दिन जब मैं बालक था तो मैं एक वृक्ष के तले खड़ा था और मैंने उसे देखा और सुना। उसने मुझसे कहा, उन बुरी स्त्रियों से परे रहना, धूम्रपान से अलग रहना, शराब और सभी शापित चीजों से दूर रहना। जब तुम बड़े हो जाओगे तब मेरे पास तुम्हारे करने के लिए काम है। मैं जानता हूँ कि वह वास्तविक जीवता परमेश्वर है जो अपने वचन को संभालता और उसे पूरा करता है।
जब मैं जरा बड़ा हुआ तो किस प्रकार उसने मुझे दर्शन दिया, मुझसे बातें करी, किस तरह से मैंने उसे निकट से जलती झाड़ी की तरह देखा और आग का घेरा निकट से चारों ओर घूम रहा था, किस तरह से मैंने उसे बताते और कहते सुना है कि क्या कुछ घटित होगा और हर बार उसका वचन एकदम पूरी तरह से सत्य निकला है। वही जो उतनी सिद्ध और सत्य बातें मुझसे कहता है वही मुझे प्रेरणा देता है कि मैं इस तरह से पवित्र शास्त्र की शिक्षा दूं जिस तरह मैं शिक्षा देता हूं। ये सही है। अतः जो कुछ मैं कहता हूं वो परमेश्वर की ओर से है। मेरे लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो कल आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु ने कहा था मैं पिता में से आया हूं और पिता के पास जाता हूं। जब वो जंगल में यहोवा परमेश्वर था तो वह जलता हुआ प्रकाश था। कितने लोग इस बात को जानते हैं? वह जलता प्रकाश आग का खंभा था और वो धरती पर आया और उसने कहा मैं पिता में से आया हूँ, मैं परमेश्वर में से आया और परमेश्वर के पास लौट कर जाता हूँ। जब वो मर गया, दफन हुआ और फिर से जी उठा और पौलुस को दमिश्क के राह में मिला, तब वो क्या था? आज भी वो आग के खंभे के रूप में है। हाँ श्रीमान, जब वो धरती पर था तब उसने क्या किया था? जब वो पौलुस से मिला तो उसने क्या किया? किस तरह से उसने पौलुस को भेजा? उसने उसे एक नबी के पास भेजा जिसने उसे बताया कि क्या करना है, कैसे बपतिस्मा लेना है। उसने उसे बताया कि किस प्रकार से उसने एक दर्शन देखा है। उस नबी ने पौलुस पर हाथ रखकर उसे चंगाई दी। वही यीशु आज यहाँ है, वही कार्य आज भी कर रहा है, आज भी वही आग का सतून है, वही बातें आज भी सिखा रहा है और उनकी पुष्टि अपने वचन चिन्हों और अद्भुत कामों से करता है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मसीही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि खुशी के अलावा और क्या करूँ। मैं खुश हूँ कि आप मसीही हैं। और यहाँ के आराधनालय वालों, मैंने आपसे कहा था कि हम इसका नाम बदलने जा रहे हैं। इसके लिए ठीक नहीं है कि यह ब्रैनम टैबरनेकल कहा जाए। ब्रैनम तो बस मनुष्य है, समझे? हम इसका नाम बदलने जा रहे हैं, इसका कुछ और नाम रखिए। कुछ समय बाद हम इस पर विचार करेंगे। मैं तो बस इसे जीवते परमेश्वर का गिरजा बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटेकोस्टल आदि बने। उन सभी लोगों को मैं अपने हृदय से प्यार करता हूँ। मैं नहीं जानता कि कौन क्या है, मैं नहीं बता सकता हूँ। मुझे तो बस वचन प्रचार करना होता है। मैं तो बस जाल डालता हूँ, फिर जाल को खींच लेता हूँ। उसमें मेंढक और जल जंतु और सांप होते हैं, कुछ मछलियाँ भी होती हैं। ये खुदा का काम है कि वो फैसला करे। मैं तो बस जाल को खींचता हूँ, वचन प्रचार करता हूँ और कहता हूँ प्रभु वेदी के चारों ओर ये सब जमा है, आप अपने लोगों को जानते हैं, आपने उन्हें जगत की उत्पत्ति से पहले से जाना है। मैं नहीं जानता कि कौन क्या है, आप जानते हैं प्रभु, अतः ये फैसला आप ही करें। मैं तो अच्छे से अच्छा बस ये कर सकता हूँ कि मैं अब कहीं और जाकर इस विशेष जाल को डालूं और एक और झुंड को पकड़ कर लाऊं। मैं तो बस इतना ही कर सकता हूँ। ठीक,
My heavenly home is bright and fair.
अब याद रखिए, अगर कोई भेंट करना चाहे, मिलना चाहे, तो बस श्री मर्सियर को बुलाएं या बटलर 2-1519 नंबर मिलाएं, हमें आपसे मिलकर खुशी होगी। अगर आपके प्रियजन सभा में आना चाहते हैं या आते हैं तो बेदारी सभाओं में शीघ्रता से सब कुछ करना होगा कि वे जल्दी लौट कर जा सकें। अब आज रात से 2 दिन के लिए मैं उपलब्ध नहीं रहूंगा, मुझे अपने लिए ये समय चाहिए। मैं एकांत में जाकर अध्ययन करूंगा और इस तरह से होगा कि प्रभु तू मेरे निकट है, तू यहाँ है, मेरा वचन कहता है कि तू उनके निकट होता है जो तेरे निकट आना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता रहता हूँ और देखता रहता हूँ जब तक उस आग के सतून को अपने पास चलता फिरता न देख लूँ और तब मुझे पता चल जाता है कि अब सब तैयारी हो चुकी है। तब उसके बाद ही मैं मंच पर आता हूँ कि चंगाई सभा करूँ, प्रार्थना करूँ और वह सब करूँ जो बीमारों और दुर्बलों के लिए मैं कर सकता हूँ। अब मैं आपकी समस्त भलाई की प्रशंसा करता हूँ। जब आप आए तो विश्वास सहित आए, हमें एक महान सभा होने की आशा है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या आज रात भाई जेफरीज यहाँ हैं? हम भाई जेफरीज और उनके काम की प्रशंसा करते हैं। मेरा अनुमान है कि वे वापस द्वीप आदि में लौट गए हैं। भाई और बहन राइट, आपने से बहुत से लोगों को यहाँ पाकर खुशी हुई है। मैंने अटॉर्नी रॉबर्टसन को यहाँ कुछ क्षण पूर्व देखा था जब वो यहाँ थे। मैं उन्हें उनके सुसमाचार प्रचार के लिए बधाई देना चाहता था जो उन्होंने उस दिन दिया था। किसी ने नहीं बताया था कि वो कौन है, मैं शर्मिंदा हो गया था। भविष्यवाणी के बारे में उनका संदेश वास्तव में बहुत अच्छा था, कुछ ऐसा ही था जो मैं आज रात प्रचार कर रहा हूँ। और इसी तरह आज सुबह या कल रात मेथोडिस्ट चर्च या चर्च ऑफ गॉड के भाई स्मिथ यहाँ थे। मुझे नहीं पता कि आज रात वो यहाँ हैं या नहीं। इस मंच पर खड़े होकर पीछे दूर तक आप देखें तो कुछ पता नहीं चलता, सपाट सा दिखाई देता है। आप कह नहीं सकते कि कौन कौन कहाँ है। भाई स्मिथ, अगर आप यहाँ हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। और क्या भाई कॉलिंस के बराबर में जॉर्जिया से आए भाई नहीं बैठे हैं? भाई आपको फिर से यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई।
और बाकी आप सभी लोग आपस में एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। मैं सोचता हूं कि ये वे भाई और बहन हैं जो उस समय उस लड़की के लिए प्रार्थना करने गए थे और इनके पास डॉक्टर महोदय बैठे हैं जो वहां थे। डॉक्टर, प्रभु आपको आशीष दे। अब मेरे भाइयों और प्रभु के सेवकों, आप मेरी इस बात से आहत मत होना कि मैं कठोर से कठोर शब्दों में अपनी बात कहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बात को पूरी तरह सख्ती से समझा दूँ। यह हमारा आराधना भवन है, हम इसी के लिए यहाँ हैं कि हम इसे पूरी तरह से वचन पर आधारित रखें और वचन के द्वारा इसे झकझोरते रहें। फिर यदि कभी आप पटरी से उतर जाएं या भ्रमित हो जाएं, तो वापस आकर फिर से देख सकते हैं, क्योंकि सुसमाचार जो प्रचारा जा रहा है टेपों में मौजूद है। आप समझे, ऐसा ही है, ये सब टेप में भर दिया गया है। सिंह, अभी हमें और बहुत सा आत्मिक भोजन मिलना बाकी है, मगर जितना आपको मिल चुका है आप उसी में कायम रहें, और बाकी बातें कुछ समय बाद हमें मिल जाएंगी। उस मनुष्य की तरह जो तरबूज खा रहा था और कहता था ये बढ़िया है, मगर कुछ और चाहिए, अतः इससे और अधिक हमें मिलने जा रहा है। प्रभु आपको आशीष दे। वास्तव में अब बहुत अच्छा लग रहा है। हम अब बपतिस्मे देने जा रहे हैं भाई नेवल, ठीक है ना? क्या यहाँ कोई है जो अभी बपतिस्मा लेना चाहता है? हमें परवाह नहीं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम यहाँ अभी आपको बपतिस्मा देने के लिए तैयार हैं। जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो अपने हाथ उठाएं। मैं सोचता हूँ कि इधर कोई महिला है जो बपतिस्मा लेना चाहती हैं। और कोई चाहता है? देखिए, हमारे पास स्त्री और पुरुष दोनों के लिए वस्त्र हैं। अब देखें कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना मेथोडिस्ट चर्च छोड़ दें या बैप्टिस्ट चर्च छोड़ दें, हम ऐसा नहीं कहते। आप वापस अपने गिरजे में जाएं। मगर यदि पवित्र वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है, ओनली जीसस या केवल यीशु के नाम में नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह के नाम में अगर आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है जैसा कि वचन बताता है, तो आपका बपतिस्मा गलत है। मैं नहीं चाहता कि नदी के तट पर पहुंचकर कुछ दुविधा बनी रहे। मैं सभी बातें साफ साफ समझाना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास बपतिस्मे के बाद वो टिकट मिला है और मैं चाहता हूं कि उस स्वर्गीय यात्रा में मैं भी शामिल किया जा सकूं। मेरी राय है कि आप भी ऐसा ही करें, आप बपतिस्मा लेकर वापस अपने गिरजे में जाएं। ये फिर आपके और परमेश्वर के बीच की बात होगी, मैं बस इतना ही कह सकता हूं। मगर पवित्र शास्त्र में कभी भी किसी को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम के अलावा किसी और रीति से बपतिस्मा नहीं दिया गया है, और अगर कोई किसी और प्रकार का बपतिस्मा लिए हुए था तो पौलुस ने कहा कि जो वचन मैं प्रचार करता हूं उसे छोड़कर अगर कोई स्वर्गदूत भी कुछ और वचन प्रचार करे तो वो शापित हो। और पौलुस ने उनको फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने का आदेश दिया। ये ठीक बात है, पौलुस ने वैसा ही आदेश दिया था, और जो कुछ उसने किया वही आदेश आज हमारे लिए भी है, और परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम वही करेंगे। हम पांव धोने और प्रभु भोज लेने में विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि मसीहा फिर से आ रहा है, और वह आत्मा में नहीं वरन देह सहित, प्रभु दोबारा दिखाई देने वाली देह सहित अपनी महिमा में आ रहा है। हम मरे हुए लोगों के फिर से देह सहित जी उठने में विश्वास करते हैं, और वह देह फिरनीदार पुरानी देह नहीं होगी जो कब्र में रखी गई थी, वरन वह एक नई जवान देह होगी जो अनंत काल तक जीवित रहेगी। हम पूर्ण रूप से आत्मा के अविनाशी या अमर होने पर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि अनंत जीवन का बस एक ही रूप है, और वह जीवन केवल यीशु मसीह के द्वारा ही आपको मिलता है। यह एकदम सच बात है, इसीलिए हम अनंत काल तक दिए जाने वाले दंड पर विश्वास नहीं करते। हम विश्वास करते हैं कि नरक की आग गंधक और अग्नि है, मगर हम ये नहीं मानते कि वह आग हमेशा तक जलती रहेगी। अगर ऐसा होगा तो फिर उस आग में जलने वालों का जीवन भी अनंत ठहरेगा, मगर ऐसा नहीं है। केवल एक ही अनंत जीवन है, और वह परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है, ये बात ठीक है। हो सकता है उस आग में लाखों या 10 लाख वर्षों तक आपको जलाया जाए, मुझे नहीं पता, मगर आपको हमेशा तक जलाया नहीं जाएगा, क्योंकि आप अनंत जीवन नहीं पा सकते। आप सर्वदा या फॉर एवर तक जलाए जा सकते हैं, अनंत काल तक नहीं। देखिए कि फॉर एवर, सर्वदा व अनंत काल, इटर्नल, इनमें फर्क है। फॉर एवर जब संयोजक शब्द या कंजंक्शन के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसका अर्थ है कुछ समय या अवधि या स्पेस ऑफ टाइम, मगर इटर्नल या अनंत काल सीमा रहित है, आपको अनंत काल तक का दंड नहीं दिया जाएगा। अनंत जीवन जो आपको मिलता है वह एक ही तरीके से आपको मिलता है, वह परमेश्वर से मिलता है, और जिसके पास अनंत जीवन है वह हमेशा तक जीवित रहता है और परमेश्वर के द्वारा आशीषित रहता है। मगर वो आत्मा जो पाप करती है उसका क्या होगा? यह ठीक है, तब निश्चित रूप से उसके पास अनंत जीवन नहीं है, उसके लिए अनंत जीवन नहीं वरन दंड है। अतः आप देखिए कि अभी बहुत सी बातें और सीखनी है जो हम बाद में लेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। अब आइए हम इस पुराने अच्छे गीत को गाएं, जबकि ये महिला वहाँ बपतिस्मा लेने जा रही हैं। मैं सोचता हूँ कि ये महिला रोजेला, क्या ये तुम्हारी माँ है? प्रभु आपके हृदय को आशीषित करे। बहन, मुझे खुशी हुई कि आप ऐसी सेवा कर रही हैं, ये बहुत अच्छा है। रोजेला ग्रिफिन हमारे छोटे मित्रों में से एक बहुत अच्छी मित्र है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये अजनबी हो सकती हैं। ये नवयुक्ति किसी समय शराब की आदत का शिकार थी। रोजेला, मेरे इस तरह से कहने की परवाह मत करना।
जब वहाँ इंडियाना में वो सभा के मंच पर आई थी तो बहुत बुरी दशा में थी। आपने कभी इतना अभागा किसी को शायद ही देखा हो। वह पूरी तरह से शराब की कैदी थी, जबकि शिकागो के चार बड़े डॉक्टर्स ने उसे जवाब दे दिया था। मगर एक रात जब वो सभा में आई तो पवित्र आत्मा ने उसके जीवन की गुत्थी सुलझा दी और सब कुछ उसे बता दिया और तुरंत सब कुछ ठीक हो गया। अब उन्हें देखिए, मेरा अंदाजा है 30 से कुछ वर्ष ऊपर उनकी आयु होगी, मगर अब 18 वर्षीय सुंदर प्यारी सी जवान महिला दिखाई देती हैं। तब से कभी भी शराब को छुआ भी नहीं है, शराब की इच्छा ही मर गई है। अब वह मसीह के लिए जीती हैं। शिकागो की सड़कों पर पापियों और मदरापान करने वालों के सामने सब स्थानों पर परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी गवाही देती हैं। प्रभु के लिए कुछ तो भी कर रही हैं। उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया था और आज रात उनकी माँ वैसा ही करने के लिए आई है। परमेश्वर ने अगर इस बहन को चंगा किया है तो ये भी उसकी सेवा में कुछ कर रही हैं। लिखा है, तुम अपने काम या वचन के द्वारा जो भी करो सब कुछ किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। पवित्र शास्त्र ऐसा ही कहता है, ये ठीक बात है। ठीक है, अब हम बपतिस्मे देने की कार्यवाही शुरू करने जा रहे हैं। कुछ मिनटों के लिए हम बत्तियां बुझा देंगे ताकि हम इस बपतिस्मे की रस्म की तैयारी कर सकें, और उसके बाद हमें उम्मीद है कि हम प्रभु में बड़ा अच्छा समय बिताएंगे। क्या आज रात आप बपतिस्मे देंगे? ठीक है, आप तैयार हो जाइए, मैं यहाँ गीत गवाता हूँ। आप बपतिस्मे देने की तैयारी करें और मैं यहाँ गीत आदि शुरू करवाता हूँ। भाई डक, यहाँ पीछे बपतिस्मे देने के लिए वस्त्र आदि रखे हैं, जल्दी कीजिए। ठीक है, आइए उन पुराने अच्छे गीतों में से गीत गाएं। और जब तक हम ऐसा करें, जब तक कि हम वापस जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए? यीशु नाम को अपने साथ ले और दंडवत करते हुए उसके चरणों में पड़ा रहे। जब हमारी यात्रा पूरी हो चुकेगी तो स्वर्ग में राजाओं का राजा उसकी ताजपोशी करेगा। आइए अब हम खड़े हो जाएं। मैं आपको बताता हूं कि हमें अब क्या करना है। बस आप घूमकर अपने पास के भाई से हाथ मिलाइए और कहिए कि भाई आप कैसे हैं? मुझे आपसे मिलकर, आपसे जुड़ते हुए अति आनंद अनुभव हो रहा है।